हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। आइए तो श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में नवे अध्याय में यशोदा माई और दामोदर भगवान इनकी सुंदर लीला का वर्णन आता है। हम सब जानते हैं कि ये जो लीला है भगवान को यशोदा माई मुखल से बांधती है, ये इतनी महत्वपूर्ण है कि पूरे इस महीने को उसका नाम दे दिया है दामोदर। दामोदर यानी जिनका उदर दाम से बांध दिया गया है उनको दामोदर कहते हैं। और ये नाम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिनका उदर सभी लोकों का, ब्रह्मांडों का, निर्माणों का उदर उगम है, उसको कौन बांध सकता है? जो सभी विश्व को, सभी विश्वों को, सभी निर्माण को, सृजन को अपने गुणों से, यानी कि क्या कहते हैं उसको, रोप्स में बांध के रखते हैं, उनको कौन बांध सकता है? सो दामोदर, इसके पीछे ये रहस्य छुपा हुआ है कि जिनको कोई नहीं बांध सकता, क्योंकि इनकी इतनी शक्तियां हैं जो सबको बांध के रखती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में, तीन गुणों के बंधन में, कर्मों के बंधन में, इनके अंदर प्रास्य शक्तिर विविधैव सूयते, अनंत शक्तियां हैं, तो इनको कोई बांध नहीं सकता है। और हम सब लोग जो है वो उनके अणुमात्र अंश हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना मनःषष्ठाणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। सब लोग, हम लोग ये जो इंद्रिय है विषयों के बंधन में बंधे रहते हैं। एक ही ऐसी शक्ति है जो भगवान को बांध सकती है, वो है प्रेम की शक्ति। वो प्रेम की शक्ति के सामने भगवान के भी सारे ऐश्वर्य फेल हो जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी। जो सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, ईश्वरो हम अहम भोगी, अहम सर्वस्य प्रभवे मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब जगह को नियंत्रित करते हैं, सर्वलोक महेश्वरम, ऐसे व्यक्ति एक वस्तु के सामने बिल्कुल बंध जाती है, वो है प्रेम। और यही ब्रजवासियों की विशेषता है कि वो प्रेम से भरे हुए हैं, उनके पास कोई ऐश्वर्य नहीं है। विद्या का ऐश्वर्य, धन का ऐश्वर्य, सौंदर्य का ऐश्वर्य, सब कुछ है, लेकिन वो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा है भक्ति मार्ग में, बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन उनके लिए वो सुंदरता इम्पोर्टेंट नहीं होती है। जो भक्त नहीं होते हैं उनके विषय में अगर कोई सुंदर होगा तो वो बहुत कॉन्शियस रहता है कि मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, लोग मेरी सुंदरता को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो एक सेल्फ कॉन्शियसनेस क्रिएट होता है अपने आप ही। हाँ, वैसे भक्तों के अंदर नहीं होता है, वो एक सादगी, एक प्रकार की भगवान के भक्ति में आने के बाद एक प्रकार की विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो यशोदा माई का सौंदर्य का वर्णन किया है, बहुत सुंदर है वो, नंद बाबा की पत्नी होने के नाते बहुत ऐश्वर्य संपन्न भी है वो, लेकिन फिर भी उनके लिए भी उनका सौंदर्य, उनका ऐश्वर्य ये महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका सारा ध्यान जो है वो श्री कृष्ण के ऊपर है। ब्रजवासी लोग भी पुराने जन्म के बड़े बड़े ऋषि मुनि, वेद ऋचाएं, दंडकारण्य के ऋषि, कौशल के बहुत सारे लोग हैं जो कई जन्मों तक तपस्या और भगवान को प्राप्त करने के लिए कष्ट कर चुके हैं, लेकिन जब गोपी बने हुए हैं वो सब लोग, अलग अलग प्रकार के, तो उनके अंदर कोई ज्ञान का गर्व नहीं है, कोई सुंदरता का गर्व नहीं है। सुंदरता तो इतनी है कि वैकुंठ की सुंदरियां भी उनके सामने तुच्छ हैं, इतनी गोपियों की सुंदरता है, फिर भी उनको उसका अवेयरनेस नहीं है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। और वो सजती सजती भी है तो केवल कृष्ण के नेत्रों को सुख देने के लिए, इसके लिए नहीं कि मैं सुंदर हूँ और मुझे सजना धजना है। सजते सजते हैं तो श्री कृष्ण के लिए सजते हैं। तो ये जो प्रेम की शक्ति है ना, ये इस लीला में हमको दिखती है कि भगवान इतने ऐश्वर्य, इतने बलवान होने पर भी कैसे एक सुकोमल माता के प्रेम के वश में अधीन हो जाते हैं। असहाय दिखाई पड़ते हैं, रोते हुए दिखाई पड़ते हैं, कांपते हुए दिखाई पड़ते हैं, है ना। साक्षात भय भी जिससे भयभीत है, साक्षात मृत्यु भी जिसको देखकर कांपता है, ऐसे कृष्ण यशोदा के सामने थर थर काँप रहे हैं कि आंखों से अश्रु आ रहे हैं, मत मारना। ये जो दृश्य है ना, ये देवताओं के लिए बड़ा आश्चर्यकारी दृश्य है, समझ नहीं पाते देवता लोग कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उनकी नज़र जो है वो सदैव भगवान के लिए भगवान के रूप में है, वो भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं, ये हमारे स्वामी है। और जब हम स्वामित्व की भावना से, स्वामी की भावना से भगवान को देखते हैं तो भगवान का सारा ऐश्वर्य सामने रहता है हमारे। भगवान की प्रेम माधुरी जो है वो इतनी प्रधान नहीं होती है, क्योंकि समझो अभी मैं आपको देख रहा हूँ, तो या तो देखूंगा कि आप किस जाति के हो, या तो देखूंगा कि कितने धनी हो, क्या पोस्ट है आपका इधर का, कितना वजन है आपका इधर, है ना, या तो मैं देखूंगा कि कितने अच्छे भक्त हैं आप। मैं आपको बताता हूँ देखने के विषय में, कहानी बताता हूँ आपको। एक कथा चल रही थी, भागवत कथा, उसके कथाकार जो थे बहुत बुजुर्ग थे, लंबी दाढ़ी थी उनकी, और कथा में बहुत लोग थे। तो एक सामने ऐसा व्यक्ति बैठा था, और जब से कथा शुरू होती थी ना, वो व्यक्ति फूट फूट के रोता था, कितने घंटे रोता था वो। तो महाराज जी को लगा, अरे क्या बढ़िया भक्त है ये, देखो मैं जब से वाणी को आरंभ करता हूँ तब से व्यक्ति रोने लगता है, कितना भाव है, कितना कथा में, कथा के रस में मग्न हो गया है। दो तीन दिन देखा तो उसको कुतूहल होगा कि भाई इसको पूछना चाहिए भी, क्या ऐसे भक्त का तो संपर्क भी होना चाहिए। तो कथा के बाद में एक दिन, तीन दिन के बाद मिला उनको, मिले भागवत आचार्य। बोले भैया बड़े महान भक्त हो आप, इतना रोते हो, क्यों रोते हो? तो क्या बताया होगा उसने, सारा भांडा खुल गया उस समय। वो कहते हैं, बोलता है कि कुछ ही दिनों पहले ना मेरे घर में एक बोकड़ था, बोकड़ मतलब गोट, और वो मर गया कुछ दिन पहले, और उसकी दाढ़ी आप जैसे ही थी, जब भी मैं आपको देखता मेरे उसकी, मेरे प्रिय बोकड़ की याद आती थी, इसलिए मुझे रहा नहीं जाता था। तो इनको लग रहा है कि कथा सुनकर रो रहा है, लेकिन वो किस दृष्टि से देख रहा है कि मेरे बोकड़ की दाढ़ी इसके जैसी थी, तो बोकड़ की याद आ रही, भागवत तो रहेगा दूसरी जगह पे। हाँ, वैसे ही कौन किस समय एक व्यक्ति को किस प्रकार से देख रहा है ना, ये आपको पता नहीं चलता है। हो सकता है कथाकार बहुत युवा अवस्था में हो, बहुत हैंडसम हो, तो बहुत सारी युवा लड़कियां आके बैठती होंगी उनका सौंदर्य देखने के लिए, कथा सुनने के लिए नहीं आती होंगी शायद। या किसी का बहुत मजबूत शरीर हो, बलदंड शरीर हो, वो किसी को आकर्षित करता हो, कथा वथा बाजू में रहेगी। तो भगवान साक्षात प्रेम की मूर्ति है, फिर भी देवता उनको अपने स्वामी, परम भगवान, परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इस रूप में देख रहे हैं। तो वो प्रेम का जो ऐश्वर्य है वो ज़्यादा प्रभावित नहीं करता है उनको, इसलिए उनको केवल आश्चर्य होता है, अरे इतने बड़े भगवान इतनी छोटी, इतनी एक सामान्य गोपी के सामने इतने वश क्यों हो रहे हैं, इतना रो क्यों रहे हैं, इतना असहाय क्यों हो रहे हैं। क्योंकि देखने देखने में अंतर होता है, यशोदा मई भगवान को भगवान के रूप में नहीं देखती, वो केवल देखते कि मेरा बालक है, वो मुझ पर निर्भर है, मैं नहीं देखभाल करूंगी तो वो बीमार पड़ेगा, मैं नहीं देखभाल करूंगी तो शायद जंगल में किसी जानवर के हाथों वो मर जाएगा, मट्टी खाएगा तो रोग हो जाएगा उसको, लेकिन देवता लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। तो यही ब्रज के भक्तों का और बाकी के भक्तों में फ़र्क है। हमको ये समझना है कि भगवान भी ब्रज में ही क्यों आए, नंगे पैर घूमने के लिए, मक्खन चोरी करने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रेमी भक्त हैं वहाँ पर जो भगवान को भगवान है इसलिए प्रेम नहीं करते हैं। वो व्यक्ति जो है बालक के रूप में सामने खड़ा है, किसी का प्रियकर है वो, किसी का दोस्त है, किसी का पुत्र है, उसी भाव में देखते हैं। बाकी हम लोग कैसे जाते हैं मंदिर में जाते हैं, सच बताइए आप लोग सब लोग, मैं भी बताता हूँ, जाते ही हमारे मन में 50 चीज़ें निर्माण होती है, ये हो दो, ये होने दो, वो होने दो, ऐसा दे दो, वो दे दो, बच्चे का एग्जाम होने दो, उसका शादी अच्छी से होने दो, उसका व्हीकल आने दो, उसका ऐसा होने दो, 50 मांगे हमारी तुरंत पैदा हो जाती है, क्योंकि हम लोग भगवान को क्या रूप में देख रहे हैं, ये भगवान है, दे सकते हैं हमको, ये हमारे ऑर्डर कैरियर हैं, इनके पास जाके कुछ निवेदन देंगे तो वो देंगे, हमारी कामनाओं को पूर्ति करेंगे। लेकिन ब्रज में आप जाएंगे ना तो ऐसे बहुत मंदिर है ब्रज में, जहाँ बाहर ही उधर पुजारी बैठते हैं, पूजा वूजा होने के बाद बाहर आके बैठ जाते हैं, अंदर आप जाने लगेंगे तो आपको बोलेंगे देखो हमारे लाला से कुछ मांगना नहीं, डोंट आस्क एनीथिंग, ये दो वो दो, अपना एप्लीकेशन लेके मत आओ, उसको दे दो कुछ देना है तो, और कुछ भी नहीं तो आशीर्वाद दो, लेकिन दो, मांगने के लिए अंदर मत जाओ। इसको ब्रज उपासना कहते हैं। ब्रज उपासना यानी भगवान को देना है, सेवा देनी है, प्रेम देना है, अपना सर्वस्व देना है, अपना मन देना है, सब कुछ देना है। और जब ऐसे भाव से हम भगवान को मिलते हैं ना तो भगवान केवल हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं करते हैं, भगवान अपने आप को दे देते हैं। जब हम अपने आप को भगवान को देते हैं तो भगवान अपने आप को हमको दे देते हैं। इसी को ब्रज का प्रेम कहते हैं। तो दामोदर लीला उसका प्रतीक है। सारे देवता लोग भी देख रहे हैं आकाश में कि मैया भाग रही है, भगवान उसके आगे भाग रहे हैं। ये कौन सा दृश्य है, सारी दुनिया उनके पीछे भाग रही है लेकिन ये डर के मारे उनके अब पीछे आगे भाग रहे हैं। ये ना समझने के लिए आचार्यों की कृपा चाहिए, संतों की कृपा होनी चाहिए, रसिक भक्तों की कृपा होनी चाहिए, तब ये सारे रहस्य की बातें ना समझ में आती है। नहीं तो एक बच्चों का मनोरंजक कहानी है ये, सब बच्चों को अच्छी लगती, हमको भी अच्छी लगी, उसमें क्या है, भगवान की सारी लीला अच्छा मनोरंजन करती है, उसमें एक्शन है, थ्रिल है, सस्पेंस है, हाँ वॉर है, क्या एंग्जाइटी है, कभी भी कृष्ण जीत रहे हैं कि वो जीतेगा, क्या हुआ हिरण्यकश्यप जीतेगा कि वराहदेव जीतेंगे कि नरसिंह भगवान जीतेंगे, ऐसा एंग्जाइटी भी होता है उसके अंदर। तो आपके जितनी भी भावनाएं हैं ना वो सब भगवान की लीला सुनते सुनते पूरी हो जाती है, हर प्रकार का रस का अनुभव होता है उसके अंदर। लेकिन वो सब ऐश्वर्य के दायरे में आता है, माधुर्य उसके परे है, माधुर्य में ऐश्वर्य को देखते भी नहीं है। भगवान इतने चतुर्भुज रूप में खड़े हैं उधर पेठा गांव में, रासलीला से अदृश्य होकर चार भुजा के विष्णु रूप में खड़े हैं, चतुर्भुज नारायण के रूप में। गोपियों को कोई पड़ी नहीं उसकी, और दंडवत क्या महाराज नारायण जी दंडवत, आपने कृष्ण को देखा है क्या किधर, इतने पूछ लेते हैं उसको। अगर हम लोग अभी कथा करते हैं समझा, जहाँ समझो विष्णु भगवान खड़े हो गए अचानक प्रकट हो गए, तो हम लोग थोड़ा बोलेंगे भगवान दंडवत प्रणाम, थोड़ा 5 मिनट डीजे, थोड़ा लिस्ट बनाता हूँ जरा आपको क्या क्या देना है ना, या तो स्तुति करेंगे, पुरुष सूक्त गाएंगे, ब्रह्म संहिता गाएंगे, प्रार्थना करेंगे, थोड़ा आरती पूजा का सामान लाएंगे, क्योंकि वो भगवान पूरे ऐश्वर्य के साथ प्रकट हो गए। लेकिन गोपियों को उसकी कोई पड़ी नहीं है, आदर सम्मान किया उन्होंने उनका, लेकिन उनका मन कहाँ है, उनको ही पूछ रहे हैं श्री कृष्ण को देखा है क्या, तो उन्होंने भी एक हाथ से बताया कि इस तरफ गए। राधा रानी आई तो वो हाथ भी पिघल गए उनके, बचे ही नहीं चार भुजा, दो ही भुजा बच गई, मुरली भी हाथ में आ गई उनके। ये सब प्रेम का प्रभाव है। वो प्रेम जब होता है तो ऐश्वर्य टिकता नहीं है उसके अंदर, ऐश्वर्य होने पर भी वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं पड़ता है, प्रकट नहीं होता है, उसकी प्रधानता नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति समझो अभी यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन आ गया बड़ा, तो वो सुंदर नहीं होगा शायद, पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, लेकिन उसकी पावर जो है ना वो ही सबको अट्रैक्ट करेगा, ये अपना मंत्री है, ऐसे सब लोग बाजू हो जाएंगे, सिक्योरिटी सब ऐसे एक ऑरा खड़ा करेगा वो, लेकिन वो प्रेम नहीं उत्पन्न करेगा, है ना, अरे मेरा प्यारा बेटा, ऐसा कोई मैया नहीं बोलेगी उसको, वो दूर से ही उसको बोलेगा बड़ा आदमी बहुत। लेकिन इतना बड़ा सर्वोत्तम बड़ा आदमी भी जो सामने खड़ा है तो मैया को लग रहा है मेरा बालक है, ये मट्टी खा रहा है, बीमार पड़ेगा, ये भैया तो देखो नदी में कूद जाएगा, वो खेलते खेलते नदी में कूद कर मर जाएगा, तो आप ध्यान रखना उसको, जमुना किनारे जाने मत देना उसको। तो ऐश्वर्य संपन्न व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, पूरे ऐश्वर्य के साथ खड़ा है, लेकिन आपको वो ऐश्वर्य प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका प्रेम इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो प्रेम से ही देखा जा रहा है उसको। वो प्रेम से क्या होता है, वो इतना सा बड़ा, मतलब इतना बड़ा व्यक्ति है वो, सर्व सर्वलोक महेश्वरम, आपको एक नन्हे असहाय बालक की तरह नजर आता है। दैट इज द पावर ऑफ लव। ये प्रेम की इतनी बड़ी शक्ति है कि एक बार यशोदा देवी द्वारका गई थी कृष्ण से मिलने के लिए, नंद बाबा और यशोदा, और द्वारका के गेट पर उन्होंने पहरेदारों को बोला हमको कृष्ण से मिलना है। तो उनको लगा कि कौन है गांव के लोग, वो बोलते श्री कृष्ण से मिलना है, मुझे द्वारकाधीश से मिलना है। कितना बड़ा प्रोटोकॉल है वहाँ पर मिलने के लिए, नियमावली बड़ी बड़ी होती है। तो उनको बहुत वहाँ पर, अभी देखो सिक्योरिटी अपना काम कर रही है, उसको पता नहीं कि आप यशोदा हो कौन हो, तो अपना काम जो दिया है वो नियम से करेगा। तो बहुत सारे प्रश्न पूछे, तो माता को रहा नहीं गया, माता ने जोर से कन्हैया करके पुकारा। तो दरबार में बैठे हुए द्वारकाधीश महाराज सिंहासन पर बैठे हुए, उनको सुनाई पड़ी माँ की पुकार, तो उधर से भागने लगे। वो सब किसी को समझ में नहीं आ रहा है, दरबार का काम चल रहा है, प्रश्नोत्तर चल रहा है, सलाह मशवरा चल रहा है, यंत्रणा चल रही है, अचानक द्वारकाधीश भगवान, और कैसा सिंहासन होता है ना, बहुत ऊंचाई पे होता है, बहुत सीढ़ियाँ होती है, उसके अंदर उतरना होता है, बाद में फिर भागना होता है। और राज दरबार जो है वो बहुत अंदर होता है, ऐसा नहीं कि दरवाजा खुलते राज दरबार, बहुत सारे दालन होते हैं, कमरे होते हैं, बीच में बहुत सारी व्यवस्था होती है, फिर अंदर सभा चलती रहती है, उसको भी पहरा होता है। वहाँ से जो उतर के भागने लगे, सीधे भाग रहे ना, तो भागना तो भी आश्चर्य वाली बात है, लेकिन उससे बड़ी आश्चर्य वाली बात क्या है, भगवान है ना, भागते 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 छोटे 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 हो गए। और जब यशोदा को मिले द्वार पर, तो जैसे उनको छोड़ के आए थे ना, उस रूप में मिले उनको। आपको समझ में आया, क्योंकि मैया उनको द्वारकाधीश कृष्ण भगवान के रूप में पुकार नहीं रही है, वो तो अपने बालक की तरह पुकार रही है, माता अपने वात्सल्य से पुकार रही है। तो भगवान द्वारकाधीश के रूप में बैठे हुए हैं ऐश्वर्य संपन्न अवस्था में, लेकिन वो सुन कैसे रहे हैं कि मेरी मैया मुझे बुला रही है। ऐसा नहीं कि मेरी प्रजा, मेरी एक प्रजा है वो मेरी मथुरा में कोई नंदगांव है वहाँ पर कोई माता कोई पुकार रही है, ऐसा नहीं। तो रिस्पॉन्स कैसे दिया, जब तक माता के पास पहुँचे तो जिस रूप में छोड़ के आए थे उस रूप में पहुँचे, और सीधे गोद में चले गए, माता ने भी गोद में उनको लिया तुरंत ही। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या चमत्कार है, और कभी भी उनको समझ में नहीं आया कि ये चमत्कार क्या है, क्योंकि उनके बस की बात ही नहीं है। जो ऐश्वर्य भाव से पूरा भरा हुआ है उसको प्रेम का पावर शक्ति कैसे पता चलेगी। ये है ब्रज का महात्म्य। उसका आगे लिखा है कि वो इतने छोटे हो गए कि गोद में जाकर स्तनपान भी करने लगे, क्योंकि जिस रूप में दर्शन करोगे वैसा ही दर्शन पाओगे। सब ब्रज में एक भजन है, जिस भाव से भगवान को अप्रोच करोगे उसी भाव में भगवान आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो माता के भाव में पुकारे तो बालक के रूप में प्रतिसाद मिल रहा है। सुदामा भी आए थे तभी ऐसा ही हुआ था, सुदामा ने राजा द्वारकाधीश को नहीं पुकारा था, तो मित्र को पुकारा था, तो मित्र के रूप में वो भी भाग के आए थे अपने सिंहासन को छोड़कर। और सभी लोगों ने जो पैरोदार ने उनको धुतकार दिया था कि तुम कौन हो, फटीचर व्यक्ति हो, मतलब देख रहे हैं, मन में सोच रहे हैं इतने धोती में होल है इसके, इतना क्रश है, इतना धूल से भरा हुआ है, पता नहीं कहाँ से आया है नंगे पैर, तो उसको मना ही कर रहे थे वो। उतने भगवान ही आए और गले लगाया उनको, धूल से भरे हुए शरीर को गले लगाया, और कंधे में कंधे हाथ गले में गला डालकर उसको लेके गए। सब द्वारपाल तो अचंभित होकर देखते रह गए, अरे ये कौन व्यक्ति है। और उसके आगे आश्चर्य दरबार में लेके गए उसको, उसके आगे आश्चर्य उसको अपने सिंहासन पे बिठाया, उसके आगे आश्चर्य पत्नी को बोला सामान लेके आओ, तो पत्नी सामान लेके आई और पत्नी ने असिस्ट किया, उन्होंने चरण धोए और अपने पीताम्बर से उसके चरण पोछे, उसका सत्कार किया, उसकी आरती की, उसका क्षेम कुशल किया, उसके बाद बचपन की यादें ताज़ा हो गई, साथ में फलाहार किया गया। ये सब सबके लिए आश्चर्यचकित था, द्वारका के लिए सब कुछ आश्चर्यचकित था। तो ये सब मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि जो यशोदा का व्यक्तित्व है ना, वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली व्यक्तित्व है। कहते हैं कि यशोदा का जो वात्सल्य है वो सर्वश्रेष्ठ वात्सल्य है, पूरे निर्माण में, सृजन में, गौलोक वृंदावन तक, भौतिक दुनिया आध्यात्मिक दुनिया जितनी भी क्रिएशन भगवान का है वो सब में सर्वश्रेष्ठ जो वात्सल्य है वो यशोदा का है। कहते हैं भगवान के पर वात्सल्य प्रेम करने वाले बहुत लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल रोहिणी माता भी वात्सल्य में ही है, नंद बाबा भी वात्सल से भरे हुए हैं, ब्रजांगनाएं जो है ना बड़ी बड़ी गोपियाँ जो उपनंद बाबा की पत्नी है, अभिनंद की पत्नी है, नंदन चाचा की पत्नी है, सब बड़ी गोपियाँ हैं। वो युवा अवस्था में गोपियाँ नहीं है, वो माता गोपियाँ हैं। इन पर भी कृष्ण, इनको भी कृष्ण के ऊपर बहुत प्रेम था। उसके बाद में देवकी को कृष्ण पर वात्सल्य प्रेम है, कुंती को वात्सल्य प्रेम है, वसुदेव को वात्सल्य प्रेम है, लेकिन यशोदा छोड़कर किसी भी माता जो वात्सल्य प्रेम रखती है वो कृष्ण को डांटने का ढाढ़स नहीं किया किसने। एक ही यशोदा थी जो कृष्ण को डांटती थी। रोहिणी ने भी कभी डांटा नहीं कृष्ण को, नंद महाराज ने भी कभी भी कृष्ण को डांटने का साहस नहीं किया। इतना संपृक्त माधुर्य प्रेम है उनका, वात्सल्य है, असाधारण प्रेम है उनका वसुदेव नंद बाबा का, प्रजांगनाओं का। लेकिन कृष्ण को डांटने का जो साहस है, इतना वात्सल्य तो केवल यशोदा मैया का ही था। कभी वो शरारत करते थे, समय पर भोजन करने को घर पे नहीं आते थे, बुलावा सुनते नहीं थे, गोपियों को बुलाकर भी उनका अनसुनी कर देते थे। रोहिणी माता जाकर बुला रही है उसको भी अनसुनी कर देते थे, तो आके डांटते थे, हे स्ट्रीट बॉय, हाँ मतलब रस्ते में खेलते हुए लड़के होते ना, शरारती लड़के होते हैं ना, उनाड़ मुलगा, उनाड़ की करना रहा मुलगा, ऐसे प्रकार के वचन उच्चारण करते थे उसके लिए। और कृष्ण भी कांपते थे उनको सुनकर, भागते जाते थे तुरंत, जैसे भी खेल रहे हैं। बच्चों के साथ खेलते थे ना, तो कहते हैं कृष्ण तो उनको खेलने के लिए सब वैकुंठ छोड़कर आए थे, तो गुल्ली डंडा खेल रहे समझो, और कृष्ण अभी हारने को आ रहे हैं, और कृष्ण हारने के लिए आते हैं खेलने के लिए। तो अपने ग्वाल बालों को हमेशा वो ऐसा खेलते हैं कि वो जीत जाए और वो हार जाए, और वो उनको कुछ बख्शीश देते रहे हमेशा अपना प्रेम का प्रदान। होली भी खेलते हैं तो होली में हारने के लिए आते हैं और फगुआ देते हैं सब लोगों को, तभी हारने के लिए आ रहे हैं। उतने में लंच टाइम हो गया और यशोदा मैया ने रोहिणी को भेजा, जाओ दोनों को ले आओ। तो बोल रही, पुकार रही है, वो सुनाई कहाँ पड़ता है, बच्चों को सुनाई पड़ता है क्या कभी? जब गार्डन में खेलते हैं, पहले माले पे घर है आपका, ऊपर से पुकार रहे, कहाँ सुनाई पड़ता है? इतने मगन है वो, बिल्कुल भी सुनाई नहीं पड़ता। आप लाउड स्पीकर पे माइक्रोफोन पे बुला लो फिर भी सुनाई नहीं पड़ेगा। एक तो सुनाई नहीं पड़ेगा और एक को सुनना भी नहीं है उनको तो चाहते भी नहीं सुनना। तो रोहिणी बोल बोल के थक गई, तो वापस चली गई। वो बोलते यशोदा दीदी वो नहीं सुन रहे हमारे। तो यशोदा दीदी आ गई, साथ डांट फटकार लगाई, पहला स्टेटमेंट ही बहुत जोरदार, तो एकदम ऐसे हिल गए कृष्ण बलराम, वो जाने लगे तुरंत। तो ग्वाल बाल कहते हैं अभी हार रहे हो, जा इसलिए तुरंत जा रहे हो, जब हम हारते तो लगे रहते हो पीछे हमारे, जब तक हम गुल्ली डंडा आपको देते नहीं तब तक, तो वापस खेलने लगते हैं, वापस मैया डांटती है तो फिर भागते हैं। क्योंकि जब ग्वाल बाल बोलते हैं ना कि हार रहे हो इसलिए जा रहे हो, कल खेलने का आओगे तो खेलने में लेंगे नहीं आपको, ये इस भगवान के लिए सबसे बड़ी धमकी है। बोलो हमारे लिए तो हम हंस रहे हैं, क्या धमकी है, बेकार की बात है ये सब, लेकिन प्रेम में ये सबसे बड़ी धमकी है उनके लिए, कि जिनके लिए जिनके साथ खेलने के लिए मैं वैकुंठ छोड़ के आया हूँ, वो कह रहे मुझे खेलने में लेंगे नहीं, तो अवतार का लाभ क्या मेरा है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ माई अवतार। गोपियाँ कह रहे हम आपसे बात नहीं करेंगे, अगर आप हमको प्रभु राम का दर्शन नहीं कराओगे, हमने सुना है कि आप पिछले अवतार में प्रभु राम थे और दाऊ भैया बलराम लक्ष्मण थे, अभी आपको दर्शन कराओ, तो ले किधर किधर, मैं तो ग्वाल बाल हूँ, मैं तो गाया चराता हूँ, आप मुझे गलत मत समझो, मैं भगवान भगवान कुछ नहीं हूँ, मैं तो ग्वाल बाल हूँ। देखो नाटक नहीं करना, अगर नहीं दिखाओगे तो कल आपसे बात नहीं करेंगे। तो वो जो धमकी है वो बहुत बड़ी धमकी है कृष्ण के लिए। तुरंत हाँ हाँ बोलते हैं, बोले आँखें बंद करो आँखें बंद करो, और तुरंत आँखें बंद करके उनको कृष्ण बलराम राम लक्ष्मण का रूप दिखाते हैं, सारे ग्वाल बाल वानर सेना बन जाते हैं और सबके आंखों के सामने सेतु बंधन करते हो, समुद्र प्रकट हो जाता है, रामेश्वर प्रकट हो जाता है, राम भगवान ईश्वर की पूजा करते हैं, सारे वानर सेना कृष्ण बलराम राम लक्ष्मण बने हुए धनुष तान कर आते हैं, सब पत्थर उठा उठा कर सेतु बनाते हैं, वहाँ से रावण प्रकट होता है, फिर राम बाण मारते हैं, यहाँ से रावण का वध कर देते हैं, सब गोपियाँ ताली बजाती हैं, वाह क्या बात है। फिर बोलते हैं आँखें बंद करो, फिर आँखें बंद कर देते हैं, आँखें खोलो तो खोलेंगे तो फिर सारे ग्वाल बाल वापस नॉर्मल पोजिशन में, और कृष्ण बलराम वापस राम लक्ष्मण के रूप में थे, वो कृष्ण बलराम बंद कराते हैं, लेकिन सेतु बंद है और समुद्र वहीं रह जाता है, और आज भी वो लीला स्थली वहाँ पर है। तो मैंने क्यों बताया आपको कि गोपियों की और ग्वाल बालों की धमकी वो सहन नहीं कर सकते, ही जस्ट कैन नॉट टॉलरेट दैट, कि मुझे ये धमकी दे रहे हैं, खेलने में नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे आपसे, तो उनको अपना जीवन शून्य लगता है। अगर गोपियाँ मुझसे बात नहीं करेंगी, ग्वाल बाल मुझे खेलने में लेंगे नहीं, तो कैसे होगा। तो ऐसे ही यशोदा माई, थोड़ा उसका व्यक्तित्व समझाने के लिए मैंने सब बातें बताई। वो उनका जन्म जो है वो मेहरानो गांव में हुआ था। कभी आप नंदगांव जाओगे तो ज़रूर मेहरानो गांव जाना, वो केवल वहाँ से 8 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। नंदगांव से कामेवन के रास्ते पर आप जाएंगे तो पहले आप 3 किलोमीटर सीधे आगे जाएंगे, फिर एक राइट टर्न आएगा, वहाँ पर शिव जी का बड़ा मंदिर है, राइट टर्न लेंगे तो अंदर 5 किलोमीटर गांव में जाएंगे, एकदम गांव में जाएंगे तो वहाँ पर यशोदा कुंड है, बहुत बड़ा विशाल, और उसके किनारे में उनका गांव है मेहरानो, जहाँ पर पटुला देवी रहा करती थी अपने पति के साथ, जिनका नाम था सुमुख गोप। उनको 3 भाई थे, यश, यशधर और यशवंत, और एक बहन थी यशोदा। तो उस गांव की भी लीला बता देता हूँ आपको, बहुत सुंदर लीला है। कैसे ना, ब्रज में कण कण में लीला है भगवान की, कण कण में। हाँ, तो यशोदा दीदी एक बार, यशोदा देवी एक बार मायके गई थी अपने नंदगांव से, और रोहिणी मैया को भी लेके गई थी, कृष्ण बलराम भी साथ में गए थे, तो ननिहाल गए ना मतलब अपने, तो वहाँ जाते ही तुरंत तो बच्चों से दोस्ती हो गई वहाँ के ग्वाल बालों से, और दिन भर इतना खेले। इसमें भी एक सोचने वाली बात है, अभी समझो यहाँ पर हम लोग जो 25 एडल्ट आए यहाँ पर, और 5-6 बच्चे आए अलग अलग, कोई पुणे से, औरंगाबाद से, कोई दिल्ली कानपुर से आया, तो सबसे पहले फ्रेंडशिप किसकी होगी बताओ, बच्चों की पहली फ्रेंडशिप होगी। ट्रेन में भी देखो, आप सफ़र कर रहे हो, आप लोग ऐसा बात नहीं करेंगे बाजू के पैसेंजर से वो, लेकिन बच्चे जाके तुरंत उनके बच्चों से, आपके बच्चों से तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा, वो तुरंत खेलना भी शुरू हो जाएगा, वो कुछ कैंडी निकाल के देगा, फिर वो बिस्किट निकाल के देगा, फिर टॉफी निकाल के देगा, फिर खिलौना निकाल के चालू हो जाएगा, फिर शोर मचना शुरू हो जाएगा, ना जान ना पहचान चालू हो गया, और बहुत देर के बाद में फिर उनके पेरेंट्स जो है, हाँ आप कहाँ के हो, आप कहाँ से जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किधर से जा रहे हो, थोड़ी सी बात करेंगे। वैसे ही नंदगांव के कृष्ण बलराम मेहरानो गांव में पहली बार जा रहे हैं, लेकिन जाते ही फ्रेंडशिप, और सुबह से लेकर शाम तक केवल खेल, इतना खेलते हैं कि शाम को उनको दोनों के पैर दुखने लगते हैं। तो आप जानते हैं ना, आप शायद जानते हैं, उनकी माता ही जानती हैं, हम लोग बचपन में रोज शाम को बच्चे के पैर दबाते हैं, क्योंकि इतना कूदते हैं ना बच्चे, रात को सबको पैर दुखता है, तो सब बच्चों को गोद में लेकर मम्मी मैया जो है पैर दबाती है, फिर सो जाते हैं। तो ऐसे ही वो भी, उनकी भी सेवा हो रही है कृष्ण बलराम की, रोहिणी मैया और यशोदा माई के द्वारा, और उनको रोज़ कहानी सुनने की आदत है। नंदगांव में भी थी, अभी इधर भी आए, तो रात को सोने का समय है तो कहानी सुनाओ, तो मैया कह रही ठीक है रामायण की सुना दो, नाटका सुना दो, तो आप हाँ हाँ बोलते रहना ताकि मुझे पता चले कि आप सो रहे हो कि सुन रहे हो, तो वो भी सुन रहे हैं, और रामायण का फिर कथा शुरू होती है, जन्म होता है राम का, बड़े होते हैं, फिर सब कुछ धीरे धीरे उतने उस, फिर वो आगे बढ़ती है कहानी, वनवास होता है, तो हम करके सुनते जा रहे हैं। और कहानी का पर्पज़ क्या है कि बच्चे सो जाएं, उठे नहीं नींद में से, है ना। लेकिन मैया कहानी बोलती गई, ये सोचा नहीं कि मेरी कहानी में कौन सा मोड़ आ रहा है अभी, तो मोड़ क्या आता है कि सीता को रावण हर ले गया है, ऐसे मोड़ पे कहानी आ जाते। तो जैसे ही ये कहानी आते ना, इसे मैया बोलती है कि सीता को रावण हर ले गया, साधु का बेस बनाकर हर ले गया, तो ये जंप हो गए एकदम कृष्ण बलराम गोद से, अरे अचानक क्या हो गया, अभी तो हूँ करके सोने के मूड में थे, जंप हो गए, बोलते सब कांप रहे, श्री कृष्ण से कांप रहे, क्रोध से कांप रहे, और सब पसीना निकल रहा है चेहरे से, और देख दिख रहा है कि हाथ पांव कांप रहे, क्रोध से होंठ दबा रहे, बोलते लक्ष्मण जा मेरा धनुष लेके आओ, अभी मैं रावण का वध करते हो। तो लक्ष्मण भी उठ गया, मतलब बलराम जी, और भाग रहे घर में इधर उधर, किधर धनुष क्या, धनुष कहाँ रखा है, धनुष कहाँ रखा है। तो ये अवतार देखकर दोनों मैया बहुत आश्चर्यचकित हो गए, अरे अचानक क्या हो गया इनको, क्या भूत बाधा हो गई कि क्या हो गया इनको, और कौन हावी हो गया, कोई प्रवेश कर गया इनके अंदर शक्ति कोई। तो बहुत देर तक कांपते रहे, बोले बेटा कहानी है वो, तो द्वापर युग भी, तुम द्वापर में जी रहे हो, तो त्रेता की कहानी चल रही है। अभी सीता को वापस लाया उन्होंने, उनका विवाह भी हो गया, वापस रहते आराम से रह रहे, कोई चिंता मत करो। तो धीरे 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 शांत हो गए और फिर वापस गोद में आके वापस सो गए। फिर रोहिणी मैया और यशोदा देवी एक दूसरे से बात कर रही है, क्या हुआ इनको, अचानक क्या हो गया, पता नहीं ये खेल खेल में दिन में क्या क्या करते हैं, सब नाटिकाएँ करते रहते हैं, कभी कोई रावण बनता है, कभी कोई राम बनता है, कभी कोई हिरण्यकश्यप बनता है, कभी कोई नरसिंहदेव बनता है, इनका चलते रहता है। तो कुछ दिन का, कभी कभी दिन में खेलते हैं ना, तो दिन में लड़ते भी हैं, तो सपने में भी लड़ते हैं कभी कभी बच्चे लोग वो कुछ याद आया होगा उनका। अभी वास्तविकता क्या है पता है आपको, वास्तविकता ये है कि साक्षात कृष्ण ने राम का रूप धारण किया और बलराम जी लक्ष्मण का रूप धारण किया। एक्चुअली अपनी मैयाओं को राम लक्ष्मण का दर्शन दिया उन्होंने, लेकिन मैयाओं को अगर पता चला कि ये भगवान है और यही राम थे, यही लक्ष्मण थे, मतलब ऐश्वर्य का प्रभाव हो गया ना। लेकिन इनके अंदर ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं हो सकता है, ये तो माधुर्य से भरी हुई माता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, उनको ये यकीन नहीं हो रहा है, लगता है कि हमारे बच्चों को भूत बाधा हो गई है, तो सपना गिरा है, कुछ ऐसे ही आवेश में आ गए हैं, क्योंकि ऐश्वर्य का प्रभाव नहीं है उनके ऊपर। जैसे ही ऐश्वर्य का प्रभाव हुआ, मुख में ब्रह्मांड देखा तो क्या किया, थोड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना करना शुरू किया। यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, वो सोचते रह गए और अपने आप को सांत्वना देते रह गए, पता नहीं ठीक तो हो गया, अभी सो गए, ठीक है कल देखेंगे क्या हुआ। तो एक्चुअली भगवान ने उनको राम लक्ष्मण का दर्शन दिया, फिर भी उनको लगा कि कुछ ऐसे ही ड्रामा कर रहे हैं, कुछ रात दिन के ड्रामा की याद आ रही है, तो कोई सही आवेश आ गया उनके अंदर। इसलिए आप मेहरानो गांव में जाएंगे ना, तो बहुत सुंदर गांव है, बहुत सुंदर यशोदा कुंड है, बहुत सुंदर शांत वातावरण है, दिव्य वातावरण है, और दर्शन किसका है, प्रभु राम लक्ष्मण और सीता का दर्शन है वहाँ पर, दोनों धनुष के खड़े हैं और नीचे यशोदा मैया की मूर्ति है। तो लोग पूछेंगे, अरे यहाँ पर राम का दर्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान और बलराम जी राम लक्ष्मण बने थे, उस लीला की याद में वहाँ पर वो दर्शन वहाँ पर है। इसलिए कहीं भी जाएंगे दर्शन करने के लिए ना, कोई बताने वाला चाहिए, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा आपको इधर राम का दर्शन क्यों, किसका राम भक्त आके बैठा होगा इसलिए मूर्ति लगाई अपने, ऐसा नहीं है। इसी जगह पर प्रभु ने माता और अपनी मौसी को दर्शन दिया था राम लक्ष्मण के रूप में। तो उसी गांव में ना एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण यशोदा पर बहुत प्रेम करता था, क्योंकि यशोदा उसके सामने जन्म हुआ था, उसका ब्राह्मण बुजुर्ग थे, बहुत प्रेम करते थे। तो एक दिन यशोदा की शादी हो गई, यशोदा नंदगांव की रानी बन गई, तो इसे बड़ा आनंद हुआ, बड़ा आनंद हुआ, इतना गर्व हुआ, कह रहे हमारे गांव की लड़की, हमारी प्यारी यशोदा नंद बाबा की पत्नी बनी, नंद रानी बनी। तो एक दिन उसको लगा कि नंद रानी को जाके मिलना चाहिए, हमारी बेटी यशोदा को। तो खबर आ गई कि ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं कि मायके से नाई भी आया ना तो भी बड़ा उत्सव होता है लड़की के ससुराल में, क्योंकि मायके से कोई आ रहा है, ये तो ब्राह्मण देवता आ रहे हैं। तो इसलिए पूरा नंदगांव नंद भवन सजाया गया, हाँ मेरे पिता जैसे ब्राह्मण पिता तुल्य व्यक्ति आ रहे हैं, पूरा सजाया गया। यशोदा ने अपने हाथ से पूरा गोबर का लेप किया आंगन में, घर में, सब जगह पे, अपने हाथ से गाय का दूध निकाला और अपने हाथ से पूरा मेन्यू बनाया। वैसे तो बहुत दासियाँ बहुत हैं तो बना सकती हैं, निर्देश दे सकते हैं कैसे बनाओ, वैसे बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। उस दिन अपने हाथ से बनाया, कहते हैं गुलाब खीर बनाई उस दिन स्पेशल ब्राह्मण देवता के लिए। फिर ब्राह्मण देवता आए, फिर वो इतना आँखों से प्रेम से अश्रु आए, ब्राह्मण देवता को आसन पर बिठाया, उनका चरण की सेवा की, उनको अभिषेक कराया, फिर उनको थाली लगाई गई और सब भोग बनाया स्पेशल, वो उनके सामने रखा गया। तो ब्राह्मण देवता, वो उनका नियम था अपने भगवान को ऑफर करके खाते थे, आग बन करके वो अपने भगवान को बुला रहे हैं। उतने में कन्हैया भाग के आते हैं, और वो गुलाब खीर खा लेते हैं। तो बालक को देखकर मैया बहुत चिढ़ती है, अरे कन्हैया तुमको मैंने अभी मक्खन खिलाया था, तुम बाबा के मतलब बाबा की तरह ना, वो पिताजी की तरह, उनका क्यों खा रहे हो, क्यों जूठा कर रहे हो, कैसे अपने भगवान को अर्पण करेंगे। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं नहीं बालक है, क्यों चिल्ला रही हो, बाकी का सामान हमें खा लूंगा उसको। नहीं 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 तुम्हारा पूरा भोग ही उन्होंने भ्रष्ट कर दिया, एक प्रकार से अशुद्ध कर दिया। तो कहते हैं यशोदा देवी ने पूरा, पुराने ज़माने में ना, अभी हमारे पास तो गैस चूल्हा है या तो हमारे पास कुकिंग रेंज है, क्या क्या है वो, हम लोग रोज़ बदली नहीं करते उसको ना। पुराने ज़माने में रोज़ चूल्हे बनाया करते थे, रोज़ मिट्टी का लेप करते थे और भोजन बना के हो गया तो उसको डिस्ट्रॉय करते थे, और कल के भोजन के लिए अगर बनाना है तो दोबारा चूल्हा बनाते थे, ईट वीट रखे, मट्टी वट्टी रखे, पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन। तो उसने एक बार बना के अपना चूल्हा डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसने दोबारा बनाया, दोबारा गुलाब खीर बनाई, दोबारा सारे व्यंजन बनाए जितने बनाए थे, और फिर ब्राह्मण देवता को भोजन लगाया तो फिर कृष्ण भगवान आए। तो मैया ने बहुत डांटा उसको, तो कृष्ण ने कहा अरे तुम्हारे बाबा मुझे ही बुला रहे हैं बार बार, आओ गोपाल मेरा भोग ले लो, तो मैं आ रहा हूँ। तो क्या उद्दंड बालक है, वो तो भगवान को पुकार रहा है और ये बालक अपने आप को भगवान समझ रहा है, कैसा ट्रेनिंग मैंने दिया उसको, कभी संस्कार दिए नहीं ऐसे उसको मैंने, कभी बताया नहीं कि तुम भगवान हो, और आज मेरे बाबा के सामने कह रहा है कि मैं भगवान हूँ, मुझे ही पुकार रहे बाबा तुम्हारे। लेकिन सत्य है ना वो, इस रियलिटी, मैया को अपने प्रेम से पता नहीं चल रहा है कि हमारा बालक भगवान है। तो फिर कन्हैया ने उस ब्राह्मण को, क्योंकि वो उनकी माता से इतना प्रेम करता है, इसलिए ब्राह्मण को अकेले एकांत में कृष्ण भगवान का दर्शन दिया, गोपाल का है गोपाल, लेकिन वो बालक के रूप में रह रहे, किसी को पता नहीं भगवान है, लेकिन पूरे ऐश्वर्य के साथ दर्शन दिया उसको। तो वो गदगद हो गया ब्राह्मण कि मेरी बेटी यशोदा केवल रानी नहीं बनी है, उसके घर में भगवान ने जन्म लिया है, ये भी उसको पता चला। बार बार दंडवत किया तो मैया भी देख रहे, अरे बाबा आप इसको दंडवत क्यों कर रहे हो, तो मेरा बालक है ये। लेकिन उसको क्या दिखाई पड़ रहा है मैया को पता नहीं। तो फिर भगवान ने अपने रूप में उसको आशीर्वाद दिया कि जहां जहां जब जब तुम जन्म लोगे तब तब मैं तुम्हारा चावल खाने के लिए आ जाऊंगा। तो वही ब्राह्मण है वो, चैतन्य महाप्रभु के लाइफ में आता है ना, वो नवद्वीप में हाय 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 करता है ना, यही है। क्योंकि उधर भी चैतन्य महाप्रभु जो निमाई है, जब उन्होंने गोपाल कृष्ण का दर्शन दिया तो बताया कि पिछले जन्म में भी मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा चावल खाने के लिए आया था। तो उससे मैं रिसर्च में था कि ये किधर, पिछले जन्म मतलब कृष्ण के जन्म में ना, मतलब ब्रज लीला में। तो पढ़ते 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 एक दिन ये रेफरेंस लग गया कि यही ब्राह्मण है वो, मेहरानो गांव का ब्राह्मण जो है वो अगले जन्म में भी चैतन्य महाप्रभु लीला में भटकते हुए ब्राह्मण के रूप में आया और जगन्नाथ मिश्रा के घर पर सच्ची माता के निर्देशन में यही लीला हुई। निमाई ने दो हाथों से भरकर उसका माखन, उसका चावल खाया है ना। तो ऐसा यशोदा का इतिहास है। तो यशोदा देवी अभी देखो, दीपावली का दिन है, हाँ सभी गोपियाँ अपनी अपनी सेवा में लगी हुई, कोई गोपियाँ फ्री नहीं है, क्योंकि उत्सव है घर में, और कृष्ण भगवान सोए हुए हैं, जल्दी उठे नहीं उस दिन, देर तक सो रहे हैं, और यशोदा मई जो है वो सोच रही है कि सभी सेवा करने में बिजी हैं, तो आज जो कृष्ण के लिए दही मंथन करने का, मक्खन निकालने का काम है वो मैं खुद करती हूँ। इसलिए बड़ा सा रंग बिरंगी मटका जो है उस पर बड़ा सा रवि मंथनी लेकर वो भी मंथन कर रही है, ठीक है। उस दिन कहते हैं कि उपनंद महाराज है ना, कृष्ण भगवान के पिताजी के बड़े भाई, नंद महाराज के ज्येष्ठ भ्राता उपनंद महाराज, जो राजा बने थे नंदगांव के, और अपना राज मुकुट नंद भगवान को पहनाया था, उन्होंने नंद महाराज को पहनाया था। उनका एक वन है खदीर वन, और खदीर वन में उनकी गायों के लिए बहुत बड़ा जलाशय भी है, वहाँ पर कृष्ण भगवान बाल लीला में बछड़ों को लेकर दूध पिलाने खेलने के लिए जाते थे और वहाँ पर जल भी पिलाते थे। उसको माधव सरोवर कहते हैं, खदीर वन, उपनंद बाबा के खीरक कहते हैं उसको। तो रेणु को वहाँ पर निमंत्रण था, बड़े प्रेम की वजह से उनको वहाँ बुलाया गया था, तो बलराम को लेकर वो उधर गई है। कृष्णा भी सो रहे हैं, रोहिणी और बलराम जी उपनंद बाबा के घर चले गए हैं, यहाँ पर माता दही मंथन कर रही है। अभी देखिए कहा है कि उन्होंने, जीव गोस्वामी बताते कि उन्होंने सैफरन येलो यानी केशरी पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी और मक्खन अभी मंथन हो रहा है। इतना सुंदर वर्णन है यशोदा मैया का। उनके जो कंगन थे वो रत्नों से भरे हुए थे, वो जब भी मंथन करे ना ऐसे छ उसका एक दूसरे को टकराने का बहुत सुंदर ध्वनि हो रहा है। उसके बाद में जब मंथन कर रही है तो उसके बांधे हुए जो बाल है वो धीरे धीरे ऐसे खुल रहे हैं जैसे मोर का पंख खुलता है ना धीरे धीरे, वैसे उनके बंधे हुए बाल खुल रहे हैं। बड़ा विशाल केश संभार था उनका, और जैसे ही बाल उनके मोर पंख की तरह खिले तो उसमें जो फूल लगाए गए थे बहुत सारे रंग बिरंगे और सुगंधी, वो धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगे, मालती के फूल, और उससे पृथ्वी का सौंदर्य बढ़ा। जैसे आकाश से कोई तारे गिर पड़ते जमीन पर तो कैसा अनुभव होता है, रात के अंधेरे में जब तारे जमीन पर गिरते हैं तो कितना सुंदर दृश्य निर्माण होता है, वैसे ही यशोदा के बालों से जब फूल गिर रहे थे तो अनुभव हो रहा था। विष्णु गोस्वामी बताते हैं कि फूल बालों से क्यों गिर रहे हैं, तो कह रहे हैं हमारी मैया जो है जिसके बालों को सुशोभित कर रहे हैं हम, वो हमारे आराध्य भगवान कृष्ण की सेवा में है, तो उनके सर पर होने का हमको अधिकार नहीं, उनके चरणों में होना चाहिए, इसलिए वो गिर रहे हैं। और फूल भी कैसे हैं, चिन्मय है सब। वृंदावन धाम में हर वस्तु चिन्मय है यानी सजीव है, बोलती है एक दूसरे से, गायें भी बोलती हैं, फूल भी बोलते हैं, फूल पंखुड़ियाँ भी बोलते हैं सबसे। तीसरा क्या हो रहा है, उनकी जो है ना नेकलेस जो पहनी हुई है वो आगे पीछे हो रही है, छुम 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 छुम, एक प्रकार का ना दिव्य संगीत उस उत्पन्न हो रहा है। किससे हो रहा है, मोतियों की माला रत्नों की माला की टकराने से, कंगन टकराने से। हाँ, तो छाती पर छुम 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 आवाज आ रही है जैसे पायल बजती है वैसे। फिर उनको इस परिश्रम की वजह से थोड़ा पसीना आया। आपने किसी ने, कितने लोगों ने दही मंथन किया है, हरे कृष्णा। हमने बचपन में MBBS पूरा होने तक रोज दही मंथन किया है, एवरीडे 10 लोग थे हमारे घर में, 4 लीटर दूध खुद मैं लेके आता था सुबह दूध वाले केंद्र से, और मैया दही जमाती थी, रात को क्रीम डालती थी उसके अंदर, और सुबह मैं उसका उठते ही पहले दही मंथन करता था। आज भी मैं दही मंथन करने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, और उसमें इतना आनंद है, उसकी जो आवाज़ है ना, फिर उसके तुषार यहाँ वहाँ उड़ते हैं सब जगह पे, हाँ, और माखन ऊपर आता है उसके। फिर हमारी मैया कहती थी कि जो रोटी का आटा होता है ना उसको जब आप गूंथते हो तो उसको तेल लगा के गूंथा करो, फिर वो ही हाथ से वो मक्खन निकालो, तो फिर मक्खन हाथ को चिपकेगा नहीं, सीधा बर्तन में गिर जाएगा, फिर चिकन माटी के बर्तन में डालना है उसको, और वो फ्रेश का फ्रेश मक्खन हम लोग खाते थे तुरंत ही। तो ऐसे उनको थोड़ा सा श्रम हुआ, और इनके कमर में जो अलंकार था उसके भी हिलने की आवाज़ आ रही थी। फिर ये जो उसके साथ में जो दही मंथन करने का ध्वनि अभी मैंने आपको सुनाया, वो तो बड़े विशाल रूप में वहाँ पर प्रकट हो रहा था, तो लग रहा है कि समुद्र मंथन हो रहा है। समुद्र मंथन के ध्वनि के साथ में घुंघरू पायल ये सबके आवाज़, कंगन सबके आवाज़ मिक्स हो रहे हैं, एक प्रकार का संगीत सभा वहाँ पर प्रकट हो रही थी। हाँ, बिना वाद्य बजाने वाले लोगों से ये केवल बहुत सुमधुर लीला वहाँ पर हो रही है, कृष्ण भगवान के लिए दही मंथन हो रहा है, उसी से एक संगीत वहाँ प्रकट हो रहा है दिव्य प्रकार का। और फिर जैसे मैंने बताया आपको, जो दही छाछ के बिंदु है ना वो ऐसे ऐसे यहाँ वहाँ उड़ रहे हैं। और आपने अभिषेक किया भगवान का कभी, किसी ने बहुत सुंदर धोती पहन के अभिषेक कभी किया है, क्या हुआ धोती का, उसका सारे तो पंचामृत जो अर्पण कर रहे हैं ना वो सब धोती पे गिर जाता है। अच्छी धोती पहन कर जाते हैं हरिनाम चादर पहन के, जब अभिषेक होता है तो धुआंधार अभिषेक होता है, बड़े बड़े पकड़ के उसको शंख को, तो भगवान को लगकर पूरा हमारे बदन पे आता है, बाहर निकलेंगे तो पूरा धोती पंचामृत से भर जाती है। वैसे ये तुषार सब यशोदा के सैफरन येलो साड़ी पर उसके गिर रहे हैं। और पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, पुत्र के प्रेम के वजह से, अभी ये जो है ना केवल सर्वेंट की तरह मंथन नहीं किया जा रहा है कि मेरा जॉब है करना है, पुत्र के प्रेम के वजह से किया जा रहा है कि आज मेरी भाग्य की घटना है आज मेरे लिए कि मेरे पुत्र के लिए मैं स्वयं मंथन कर रही हूँ। तो पुत्र के प्रेम की वजह से क्या हो रहा है, उनके दो स्तनों से दूध की धार लग रही है वात्सल्य भाव से, और उसके उत्तरीय वस्त्र को गीला हो रहा है, जात कंप हो रहा है यानी उसकी पूरी बॉडी जो है ना वो प्रेम से कंपित हो रही है, और सुभ्रु यानी उसके भ्रु यानी आईब्रोज, सुभ्रु यानी बहुत सुंदर जो क्या कहते हैं कमनीय उनकी जो भवे थी वो भी स्वेद बिंदु से गीली हो गई, पसीना आता ना, तो ये भवे क्यों बनाई गई है क्योंकि वह पसीने को रोकती है और आंखों में वो द्रव्य आने देती नहीं है, तो सब वो घर्म बिंदु जो है स्वेद जल यहाँ पर आके इकट्ठा हो गए, तो दिखाई पड़ रहा है कि माता के इस परिश्रम से उनके भवे जो है भ्रुकुटी वो गीले हो रही है। तो यशोदा का जो ये जो स्वभाव है ना, मग्न होकर सेवा करना, कृष्ण के लिए कुछ भी कर रही है तो इसी प्रकार से पूर्णता अपने आप को भूल कर वो सेवा करती है। कभी कभी जब मक्खन का मंथन हो रहा है, जब भी स्तनपान किया जा रहा है कृष्ण के लिए, जब भी उसके लिए संदेश बनाया जा रहा है या भोजन बनाया जा रहा है, या गौओं की सेवा कर रही है कृष्ण के लिए, क्योंकि ये गौओं की सेवा करूँ तो फिर वो दूध देंगी, फिर मैं उसकी बर्फी बनाऊँगी, फिर उसका संदेश बनाऊँगी, फिर उसका मक्खन बनाऊँगी, फिर उसका घी बनाऊँगी, इस भावना से सेवा कर रही है। प्रत्यक्ष कृष्ण की सेवा नहीं हो रही है, गौओं की सेवा हो रही है, लेकिन वो भी कृष्ण के लिए की जा रही है, तभी भी उनके जो उत्तरीय वस्त्र है वो दूध से गीला होता था, उनकी आंखें हमेशा प्रेम से भरा हुआ करती थी। जब कृष्ण जाते थे ना गौआ गैया चराने के लिए या बछड़ों को चराने के लिए, तो उनको रहा नहीं जाता था कि कितना देर दूर गया है ये, कब आएगा लौट के, कब आएगा लौट के, तो बार बार ना ऊपर जाती थी। यशोदा बैठक नाम का स्थान है नंदगांव में, वो बहुत अभी भी है, बहुत सुंदर पथरीला मंदिर बनाया है, वो यशोदा बैठक है, वहाँ पर जाकर वो चारों तरफ देखती थी कहाँ पर कृष्ण गैया चरा रहे हैं, दूर देखती थी खजीर वन में गैया चरा रहे हैं, तो अच्छा लगता था उनको, लेकिन बहुत व्याकुल रहा करती थी। कहते हैं यशोदा के आँखों की नीचे की पलकें कभी भी जल से विरहित नहीं थी, हमेशा अश्रु जल से भरी हुई थी, और सदैव उनका उत्तरीय वस्त्र जो है वो दूध से भरा हुआ था, जहाँ जहाँ चलती थी वहाँ दूध हमेशा महल में गिरता रहता था, इतना प्रेम वात्सल्य प्रेम है बालक के प्रति। तो इस प्रकार से नारद मुनि भी पूछते हैं कि इनको इतना डांटने का अधिकार किसने दिया, कौन सी बड़ी तपस्या इन्होंने की है, ऐसे नारद मुनि प्रश्न पूछ रहे हैं। कृष्ण भगवान ने अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ा केवल यशोदा के वात्सल्य को अनुभव करने के लिए, अपना परम भगवान का स्थान भी छोड़कर एक बालक बनकर उनके आंगन में खेलने के लिए आए हो, और द्वारका में भी उनकी पत्नियां उनको बार बार पुकारती थी कि आप बार बार मैया की याद क्यों करते हो, तो कहते थे कि आप इतना अच्छा भोजन बनाते हो, क्योंकि वो भोजन खिलाती थी ना तो बार बार रोते थे वो, तो पत्नियों को लगता था कि अरे शायद भोजन में कुछ गड़बड़ हो गया रहेगा, इसलिए वो दुखी होकर अप्रसन्न हो रहे हैं। तो बार रुक्मिणी पत्नियां पूछा करती थी क्या हुआ स्वामी, कुछ भोजन में कुछ त्रुटि रह गई तो बता दीजिए, हम उसको अगली बार ठीक करेंगे। तो नहीं नहीं आपके भोजन में कोई खोट नहीं है, आपके भोजन में कोई त्रुटि नहीं है, आपका भोजन बहुत परमोच्च स्वादिष्ट है, लेकिन मेरी मैया जो सख्त खाना, जैसे होता है ना बूंदी का लड्डू होता है कड़क होता है ना बहुत, वो बालक उसको काट नहीं सकते हैं, तो मैया उसको पाउडर करके देती है, ये क्या करती थी ऐसे सख्त खाना जो था ना उसको अपने मुँह में डालकर पूरा चबा कर अपनी लाल रस से प्रेम रस से भर कर फिर जो पेस्ट निकाल कर अपने मुँह से बालक को खिलाती थी। तो भगवान द्वारकाधीश बनकर अपनी पत्नी को क्या बता रहे हैं कि आपका प्रसाद तो बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी जो मेरी मैया चबा कर पेस्ट बनाकर अपने मुख से निकाल कर मेरे मुख में देती थी उसका स्वाद तो उसको नहीं आएगा ना, ऐसा अपनी पत्नियों के सामने अपनी माता का गौरव करते थे। तो इस प्रकार से आगे लीला बढ़ रही है, यशोदा देवी गीत गा रही है। ब्रज में जब भी दही मंथन होता है कोई भी गीत गायन के बिना नहीं होता है, और वो गीत गायन कैसे होता है, खुद के द्वारा रचाई गई कविता के गीत गायन होता है, यानी कोई अपने समझो कोई कविता कवयित्री है, कोई पोएटिस है, और वो पोएट्रेस कविता लिख रही है और सब गोपियों को बांट रही है कि भाई आज के दिन आपको ये गाना गाना है जब मंथन करेंगे, ऐसा नहीं है। वो सब अपना अपना गीत बना रही है। कैसे बना रही है? कल कृष्ण के गौचारण में जो लीला हुई, जो बालकों ने घर पे आके सुनाई, उस पर वो खुद गीत रचाते थे, और वो कल के ऊपर परसों के ऊपर जो भी पिछला इतिहास है आजकल का, उसका गीत वो दही मंथन करते हुए गाया करती थी। तो श्रद्धा भी अभी गीत गा रही है, देखो क्या गीत गा रही है। हे नंद कुल तिलक, तुम सारे आनंद का स्रोत हो, सारे पवित्र और पुण्यवान ब्रजवासी के आनंद का आप स्रोत हो। आपने पुतना का वध किया और आपने गोकुल वासियों को दिव्य आनंद का अनुभव कराया, आपने छकड़े को उल्टा कराया और उस समय सब लोगों की एक दिल की धड़कन मिस हो गई। दे मिस द हार्ट बीट व्हेन दे सॉ द कार्ट अप बीइंग अपसाइड डाउन किक्ड बाय कृष्णा। और आपने इस तरह से आपके लिए, देखो मैया क्या कह रही है, आपके लिए, आप बालक को बचाने के लिए परम पुरुषोत्तम विष्णु भगवान ने उस छकड़े को मार दिया। किसको? शक्टासुर को। आप मेरे आंगन में हाँ घुटवन चलते हो, आप सो इतने कुशल हो, आप जब नृत्य करते हो खेलते हो तो बड़े आनंद आता है देखने के लिए। अभी एक एक वल्लभाचार्य जी का भजन है, मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भैया, हाँ खेलत दो भैया। दोनों भैया जो है वो छोटी अवस्था में, इन्फंट अवस्था में नंद भवन के आंगन में खेल रहे हैं, और ये लीला वल्लभाचार्य अपने ट्रांस में देख रहे हैं, उनके भाव में। तो उसमें ये भी कहा गया है कि सारे सारे ऐश्वर्यमय स्थानों का आनंद और संग छोड़कर नंद बाबा यशोदा और रोहिणी को आनंद देने के लिए ये बालक बनकर यहाँ पर गोबर और गोमूत्र में और आंगन में खेल रहे हैं, घुटवन नंगे पैर खेल रहे हैं। और दिव्य आनंद, इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे, इन्होंने अपने बाल लीलाओं से, चटपटी बाल लीलाओं से सारे ब्रजवासियों को, नंदगांव वासियों को, गोकुल वासियों को आनंद के सागर में डुबो दिया। तो वो कह रहे हैं कि तुम हमारे आंगन में घुटवन चलते हो, सारे ब्रजवासियों को आनंद देते हो, और आप इतने सुंदर हो, इतने आकर्षक हो, जब आप इतने सुंदर दिखते हो जब आप गौशाला में बछड़ों के पूंछ को पकड़कर, जब वो बछड़े भागते हैं तो आप पूंछ छोड़ते नहीं हो और वो भागते रहते हैं, और आप गिर जाते हो, हाथ में पूंछ है, पेट के बल गिर जाते हो, और गोबर और गोमूत्र के चिकने मिश्रण में कैसे पूरे गौशाला में घूमते हो, तो बड़े सुंदर लगते हो। आपके शरीर पर लगा हुआ गोमूत्र, गोमूत्र गोबर का जो मिश्रण है, वो हमारे चंदन अगुरु लगाए हुए सुगंधित द्रव्यों से मिलकर जब लौट के आप आते हो तो इतना सुंदर लगते हो, और उसी चंदन अगुरु लगाया हुआ है उसी में वो गोबर में मिश्रित, इसमें पेट के बल पे घूम के आए हैं, सारी पीली धोती, सारे अलंकार गोबर गोमर मिश्रित से भर गए हैं, और वैसे ही भाग कर आकर मैया के गोद में स्तनपान करते थे। तो सारे गोबर गोमूत्र जो है वो मैया के कपड़ों को भी लगता था। देखिए मैया क्या कह रही है, तो आप इतने सुंदर दिखते हो, ऐसा गीत में गा रही है। ओ कृष्णा सदैव मेरे पास रहना, मेरे घर पर रहना, और मुझे आपकी माँ को ऐसे ही अनंत आनंद देते रहना, ऐसे करके मंथन किया जा रहा है, गीत भी गाया जा रहा है, समुद्र मंथन का म्यूजिक भी है, कंगन का भी म्यूजिक है, कमर काचने का भी म्यूजिक है, हर प्रकार का म्यूजिक बज रहा है। ये दृश्य देखकर ना सारे देवता भी अवाक हो गए कि ये कैसी अवस्था है, कंप्लीट परफेक्शन अवस्था है ये यशोदा माई की। और आगे देखिए, हर एक यशोदा माई की अवस्था जो है परफेक्ट ही है, भले वो डिफरेंट डिफरेंट है लेकिन वो हर अवस्था परफेक्ट है। ये सब नारद मुनि देवऋषि आकाश से देख रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो उसने में ऐसा लिखा है जय गोस्वामी ने, फिर वो आनंद के सागर उठ पड़े, द ओशन ऑफ लव वोक अप, और जोर जोर से लंबी लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को और पैरों को अंगड़ाई देते हुए आंखों को मलते हुए माता माता करके पुकारने लगे। माता, फिर वो उठकर आए और माता माता करके पुकार कर पल्लू खींचने लगे। इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ये दही मंथन करना छोड़ दो, मुझे भूख लग रही है, मुझे स्तनपान कराओ। तो मैया जो मथनी जो है वो वहाँ छोड़ती है, दोरी को भी छोड़ देती है, तुरंत अपने प्यारे लाला को गोद में लेती है और स्तनपान कराती है। जब स्तनपान कराती है तो बड़े बालक कैसे पीते हैं स्तन, देखा आपने, आंखें बंद करके पीते हैं। बालक भी मग्न, माता भी मग्न है ना। बालक के नन्हे नन्हे ओठों का जो स्पर्श होता है, वो कहते हैं कि योगियों को जो आनंद मिलता है ना समाधि में, उससे भी हजारों गुना ज़्यादा आनंद जो है वो माताओं को स्तनपान कराते हुए मिलता है। और यहाँ तो माता यशोदा है और बालक कृष्ण है, तो आप सोच सकते हैं कि आनंद की पराकाष्ठा कितनी होगी। बीच बीच में वो बालक ना ध्वनि भी करता है स्तनपान करते करते, तो अपना मुख भी बीच में खोलता है तो ध्वनि आता है आवाज़, क्योंकि वो दूध पी रहे ना, तो उसका दूध पीते समय कुछ कुछ आवाज़ होता है और उसमें मुख भी खुलता है, तो उसमें मोती की तरह नए नए आने वाले दांत भी दिखाई पड़ते हैं उनको। और मैया गिनती है, अरे एक आया है, दो आया है। आपको पता है सबसे पहले ऊपर के दांत आते हैं, तो ऊपर के दो आ गए हैं, अभी दो आ गए हैं, अभी चार आ गए हैं, ऐसे चर्चा होती थी रोहिणी यशोदा में। तो अभी निहार रही है बालक के मुख को, बालक बड़े ही प्रेम से आँख बंद करके दिल लगा कर दूध पी रहा है और मैया उसको निहार रही है। वो जो निहारना है ना, वो परमोच्च आनंद है भक्ति का, जो कृष्ण को दूध पिला रही है। फिर उसके बाद में हमारे जो सत्यव्रत मुनि हैं लिखते हैं ना उसके बारे में, इदम्ते मुखाम्भोजम् अत्यंत नीलय वृत्तम कुंतलय स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या। वही मुख है ना उनका, घुंघराले बाल है, उनके गालों पर फैल रहे हैं और वो अपने बिंब जैसे होंठों से दुग्ध पान कर रहे हैं। वो सब दर्शन मैया कर रही है, पूरी तरह से भाव विभोर हो रही है मैया। कहते कि उन्होंने एक हाथ से ऐसा मंथन का जो रॉड था ना वो पकड़ के रखा था और दूध पी रहे थे। बृहद भागवतामृत में लिखा है कि भगवान ने चार वर्ष तक माता का दुग्धपान किया, अप टू फोर इयर्स। और प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि जो पुत्र होता है ना, मेल चाइल्ड, उसको माता ने हमेशा 5 साल तक दूध देना चाहिए। इसका कारण बता दिया प्रभुपाद जी कि जब वो बड़ा हो जाता है ना, 2 साल के बाद पता चलता है उसको, ये मैया है, ये बाबा है, ये मौसी है, ये लड़की है, ये और आदमी है, ये पुरुष है, ये स्त्री है। तो जब बड़ा होता है फिर भी अपनी माता का स्तनपान करता है, तो आगे जाकर वो अवयव किसी भी स्त्री के शरीर में देखेंगे तो उसको माता का भाव ही आएगा कि ये अवयव मेरे माता के शरीर में भी है जो मैं पीता हूँ रोज, और किसी के शरीर में देखेंगे तो उसका माता भाव आएगा। इसलिए माता जी का जो भाव है वो दिल में दृढ़ करने के लिए उनको समझ आने तक दुग्धपान कराते रहना चाहिए, ताकि वो हर स्त्री को केवल माता के रूप में देखेंगे। ये प्रभुपाद जी का भाव था। तो इस प्रकार से यशोदा जो है वो पूरी तरह से स्निग्ध भाव से भाव विभोर होकर, उसने में उनको ना कुछ जलने की भाषा थी, क्योंकि उन्होंने गैस मतलब अंदर के चूल्हे में कुछ दूध रखा है उबालने के लिए, जो उबाल उबाल कर उबाल उबाल कर उसका संदेश बनाएंगे, पेड़ा बनाएंगे, बर्फी बनाएंगे या और मलाई रबड़ी बनाएंगे। तो वो दूध दूध जो है वो उबल कर अभी अग्नि में गिरकर जो जलने की वो आती है वो आने लगी। तो ये भागी, क्या किया उसने, देखो यहाँ पर लिखा है कि अलग अलग वर्णन दिया है, उन्होंने कहा कि देखो अगर मैं ये जो इसके पीछे एक दास्तान है क्यों वो भाग रही है, क्योंकि यशोदा देवी ने अपनी लाखों गायों में से 100 गाय ऐसे बनाई थी जिनको गोवर्धन के तलेटी में कमल की सुगंध आने वाली घास बनाकर वो उसको वहाँ पर चराया करती थी। स्पेशल गाय थी उनकी, वो स्पेशल घासों को वहाँ पर उगाते थे और वो एरिया में केवल ये 100 गायों को चलाते थे, और वो जो घास खाती थी कमल दल वाले खुशबू वाली, तो उनके दूध को भी कमल की खुशबू आती थी। अभी हमारा दुर्भाग्य ऐसा है कि हमने कमल कभी खुशबू वाला दिखा ही नहीं। अब कोई भी कमल ले लो बाजार का ले लो, कुछ खुशबू ही नहीं आएगी उसको, लेकिन कमल की दिव्य खुशबू होती है, बहुत सुंदर सुगंध होती है। वो सुगंध जो है ना वो दूध निकालते समय भी गाय की आती थी, सब जगह वातावरण में वो गुला कमल की सुगंध आती थी जब वो दूध दोहन करते थे। और फिर वो जो गाय को विशेष देखभाल करने के बाद वो दूध मिलता था उसकी वो बर्फी पेड़ा संदेश बनाती थी, उसका ही मक्खन बनाती थी, उससे अधिक कॉन्सेंट्रेटेड संपृक्त कमल की खुशबू वाला मक्खन बनता था, और ऐसा मक्खन वो कृष्ण को खिलाती थी, बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जो नंद भवन में यशोदा के गौशाला में बनता था। तो कितना कीमती दूध है वो, जो अभी उबल कर नीचे अग्नि में गिर रहा है, जिसके अभी संदेश नहीं बनेगा अगर पूरा बोल जाएगा तो। ये विचार से मैया बालक को कह रही है, बेटा मुझे थोड़ा देर के लिए जाने दे, तनिक देर जाने दे मुझे, नहीं देर, हाँ मैं तुम्हारी आने के बाद आरती उतारूंगी, तुमको मक्खन खिलाऊंगी, तुमको मैं संदेश खिलाऊंगी, तब तक तुम यहीं बैठना और ये जो दही का मंथन, दही मंथन का पात्र है उसकी रक्षा करना। मैं अब भी जाई और अब भी आई, जब तुरंत आई और उस पात्र को नीचे उतार के अभी आ गई मैं। ये मैया सोच रही है कि वो स्तनपान के लिए तो मैं ही हूँ ना, मेरा तो मेरे पास ही दूध है, कभी भी पिला सकती हूँ, लेकिन वो उबल जाएगा तो समाप्त हो जाएगा, तो मैं यो रख के आऊँगी तो वो भी रहेगा ये भी रहेगा, दोनों बालक के आनंद के लिए है। इस भाव से वो सोच रही है कि मैं जाके आती हूँ। तो दूध भी जो चेतन है, चिन्मय है, दूध क्या सोच रहा है कि अगर कृष्ण भगवान माता के स्तनपान में मग्न है, मैया पिलाने में मग्न है, बालक पीने में मग्न है, तो हमारा क्या काम, हमें क्यों पिएंगे कृष्ण, इतनी मग्न होकर दूध पिया जा रहा है तो हमारा तो अस्तित्व यूजलेस हो गया, तो हमको अग्नि में कूद कर जान देनी चाहिए, इसलिए वो उबल कर अग्नि में कूद रहे हैं, ये हमारे से सेवा नहीं होगी। अभी हम तो गैया के थन से आकर कृष्ण की सेवा करने के लिए यहाँ पर आए हैं, इसलिए गाय जो ये सब जीव गोस्वामी बताते हैं। तो वो तुरंत गई, कहते हैं जब वो वहाँ से गई तो पूरा रास्ता जो था ना, जहाँ से बैठकर दूध पान कर रही थी, तुरंत कृष्ण को नीचे रखा, ये सब थोड़ा वो समझाया और गई तो पूरा रास्ता जो है ना वो पूरे दूध के फव्वारे से भीग गया पूरा, जो उसके उनके स्तनों से उसके तुषार उड़ रहे थे प्रेम के, क्योंकि वात्सल्य तो कम नहीं हुआ ना। तो तुरंत पात्र को नीचे रखा और कृष्ण को क्षमा मांगने के लिए वापस भाग के आई वो, क्या विल अपोलोजाइज टू कृष्णा कि सॉरी मैंने आपको दुग्धपान में व्यत्यय लाया, क्षमा करूंगी मांगूंगी और तुरंत वापस गोद में लेके फिर उसको दूध पान करूंगी, ये सोचकर वो वापस आ रही है। लेकिन कृष्ण सोचते हैं कि मेरे दूध पान करने के आगे कोई बड़ा काम हो सकता है क्या, जब मैं दुग्धपान कर रहा हूँ उससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता, मैया ने उससे बड़ा काम करने के लिए मुझे छोड़कर क्यों गई, वो ऐसा कौन सा काम है जो मेरे दुग्धपान से बड़ा हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। अब मैया ने इतना बड़ा अपराध किया है मेरा, मैं उनको अच्छा दंड दूंगा, कोई सा काम करूंगा, मैया पछताएगी। तो जैसे ही गया, गई माता जी छोड़ के उनको, तुरंत पैर जमीन पर पटका जोर से क्रोध से, और वो रवि निकाला और उससे मटका फोड़ दिया। एक जगह लिखा है कि पत्थर पड़ा था उसको उठाया और मटका तोड़ दिया। अभी तब तक तो आधा मक्खन और ऑलमोस्ट बन गया था, तो दही का जो मोटा मोटा होता ना दही, उसका रूपांतर पतले वाले छाछ में हो गया था, उसके ऊपर मक्खन तैर रहा था, जैसे मटका टूटा सारा छाछ जो है वो बह गया और उसके ऊपर जो है मक्खन भी तैर रहा है। थोड़ा बड़ा मक्खन लिया, खाया दोनों हाथ से और टूटा हुआ रही वहाँ फेंका, और बाद में ध्यान आया अरे मैं तो बड़ा मटका तोड़ दिया, तो मैया भी नाराज हो जाएगी। हाँ थोड़ा थोड़ा खाया और गया, और क्या जाएगा कहाँ से, सब जगह छाछ फैला हुआ है, तो छाछ में से धीरे धीरे चलता हुआ आगे चला गया, छाछ खत्म हो गया, उसके आगे छाछ लगे हुए पैर के निशान आए और अगले कमरे में भागा, और वहाँ पर देखा कि और कुछ मटके लटके हुए हैं। उतने में जब ये टूटा हुआ देखा, सब बंदरों को बुलाया, आओ आओ, सब दोस्तों को बुलाया, सब लोग आ गए, उन्होंने भी मक्खन खाया जो गिरा हुआ था वो भी खाया, फिर वो कमरे में उसके पीछे पीछे गए, खिड़की से आए, कुछ इधर से आए, दरवाजे से आए, और फिर दो तीन लोग खड़े हो गए उसके ऊपर चढ़ गए, उनको मक्खन निकालने की मदद किया, एक उखड़ ले लिया उसके ऊपर खड़े होकर मक्खन ले लिया, मटका नीचे उतारा, उखड़ पे बैठा, सारे ग्वाल बाल बंदर चार तरफ इकट्ठा हो गए और सबको ऐसे खुद भी खा रहे हैं, उनको भी खिला रहे हैं, एक घास खुद खा रहा है, दूसरा खिला रहे हैं, वो भी मग्न होकर खा रहे हैं। देखो कृष्ण के सुकोमल दिव्य कर कमलों से उंगलियों के द्वारा, हाँ प्रेम से उनको माखन खिला रहे भगवान, अमृत है पूरा अमृत, अमृत से भी बढ़कर स्वाद है उसके अंदर, और वो इतना आनंद ले रहे हैं क्योंकि भगवान की उन बंदरों ने रामलीला में इतनी सुंदर सेवा की थी। तो प्रभु जी ने कहा उनको कि देखो मैं तब वनवास में था, मेरे पास कुछ इतना था नहीं आपको देने के, आपका सत्कार करूं, कुछ आपको दे दूं, अगले अवतार में मैं आपकी सेवा करूंगा। तो वो सारे बंदर जो है अगले अवतार में बंदर बनकर ब्रज में आए और बड़े धूमधाम से भगवान ने उनको आनंद दिया है। हाँ, वहाँ तो प्रभु प्रभु थे और वो अपना सेवा कर रहे थे, युद्ध लड़ रहे थे, ऑफिशियल था। यहाँ पर तो मित्र बना लिया उनको, घर में आंगन में चोरी करके उसके पीछे भागना, खेलना उनके साथ में बंदर जैसा, उनके पीछे खेलना, सब कुछ निकट का आनंद दिया, एकदम निकट का। तो वो बंदर है, वो भगवान के अभी हाथों से प्रेम भरा मक्खन खाने का आनंद लूट रहे हैं। अब मैया आती है, मैया का भाव क्या है कि मैं माफ़ी मांगूंगी, तुरंत गोद में लूँगी, फिर स्तनपान कराऊँगी, ये सोच कर आ रही है। देखते तो क्या है, मटका टूटा हुआ है, मक्खन बिखरा हुआ है, बहुत सारा मक्खन आना चाहिए था, उसमें से बहुत कम मक्खन दिखाई पड़ रहा है, इतना ढेर सारा कीमती छाछ जो है वो पूरा ज़मीन पर बह रहा है, और वो उसमें वो जहाँ तक बह रहा है उसके आगे वो सफ़ेद सफ़ेद चरण चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं, वो हमारे कुलदीपक के ही हैं, उसके आगे देख रहे हैं, वो कमरे में जा रहे हैं। तो उसको लगा मेरा बालक जो है ना वो अच्छे संस्कार नहीं प्राप्त कर रहा है, मैंने उसको ऐसा नहीं सिखाया कभी, ऐसे करना चाहिए, ये कहाँ से सीख रहा है वो, ये मेरा ड्यूटी है कि मैं उसको अच्छे संस्कार दूँ, अभी ये लगता है फेल हो रहा है इसके अंदर, मेरा कर्तव्य बढ़ गया, अभी मुझे ध्यानपूर्वक उसको संस्कार देना पड़ेगा ताकि वो अच्छा बने, अच्छा व्यवहार करे, लेकिन ये बिल्कुल आज का परफॉर्मेंस उसका है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इट्स नॉट गुड, मैं उसको ज़रूर दंड दूंगी और उसको सीधे रास्ते पर लाऊंगी, मेरा कर्तव्य है मेरे बालक को संस्कार देना। तो फिर वो एक बैत की डंडी जो है ना उठाती है और वो पैरों का जो है उसका फॉलो करते करते अंदर पहुंचती है, दरवाजे तक पहुंचती है उस कमरे के, तो क्या देखती है, कृष्ण जो है ना पीठ करके बैठे हुए हैं, पाट मोरा, हाँ, कृष्ण का मुख उस तरफ है और चारों तरफ सब ग्वाल बाल बंदर सब साथ साथ बैठे हुए हैं। हाँ, ग्वाल बालों भी फ्रेंड है ना सब बंदरों के, तो उनको कोई संकोच नहीं है, सब मिलके भगवान के हाथ से खा रहे हैं, और जो कृष्ण के सम्मुख बैठे हैं उनका मुख यशोदा के सामने है, यशोदा ऐसे खड़ी है, उनका मुख ऐसे, बीच में कृष्ण ऐसे बैठे, तो वो जब ही आती है तो वो ऐसा मुंह करते हैं, उनको खिला रहे हैं, तो उनके मुख में जो भाव है वो देखकर समझते हैं कृष्ण हमारे कि मैया आ गई है, तो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं, वही मटका उखड़ पकड़ छोड़ के सब अपने अपने भाग जाते हैं, और ये अपने घर में से बाहर अगले दरवाजे से बाहर निकलता है। फिर मैया जो है उसके पीछे 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 भागती है। अच्छा, एक बीच में बात बताना भूल गया मैं, जब ये टूटा हुआ पात्र और आगे जाकर टूटे हुए अनेक पात्र जब मैया देखती है तो वो सोचती है कि ऐसे कैसे किया मेरे बालक ने, और ऐसे नाक को हाथ लगाकर सोच रही है, ऐसे जीव गोस्वामी बता रहे हैं। तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी क्या बोलती है, मैं पहले इंग्लिश में बताता हूँ बाद में हिंदी अनुवाद करता हूँ। द बेबी बी being very thirsty and not fully satisfied has broken the lotus bud. On breaking, the bee has gone to other lotus to find more honey as he could not get it from the previous lotus. Lotus मतलब क्या कह रही है कि जो कृष्ण की उपमा उन्होंने वो उसको दिए, बी मतलब क्या, भवरा, भवरा है ना, भवरा, तो भवरा जो है बालक भवरा जो है वो एक कमल की कली के पास आया था मधु प्राशन करने के लिए, लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिला, इसलिए उसको छोड़कर वो दूसरे पात्र के पास गया और उसको तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद में तीसरे पात्र के पास गया, इस प्रकार से वो गया है। मोर ओवर यू आर एक्सपर्ट एंड स्किलफुल इन टेकिंग द मिल्क फ्रॉम द फायर बट यू विल बी प्रेज्ड मोर देन मोर फॉर पेसिफाइंग योर सन्स। आकाशवाणी क्या बोल रही है कि तुम तो बड़े कुशल हो, अपने बालक को नीचे उतार कर चली गई किचन में पात्र को उतारने के लिए, अग्नि से उतारने के लिए, लेकिन तुम्हारा भविष्य में बहुत गौरव होगा कि किस तरह से तुमने पुत्र के साथ में आगे लीला की, इसके बारे में तुम्हारा बड़ा गौरव होगा। तो कृष्ण को बंदरों को बड़े ही रेस्टलेस, अभी पता है ना हमने चोरी किया है, गलत काम किया है, तो ऐसा आराम से नहीं कर रहे हैं, खुद भी खा रहे हैं, अच्छे को भी दे रहे हैं, पता नहीं कब आएगी मैया, और आई जाती है तो वो बंदरों को बड़े रेस्टलेस मतलब अस्थिर आंखों में देखते हैं। तो वो कुछ बंदर पेड़ पे चढ़ गए, कृष्ण भी पेड़ पे चढ़ गए, फिर उतर गए, तो मैया को डरते हुए वो रोने लगे, भागने लगे, बीच बीच में रो रहे हैं, बीच बीच में हंस रहे हैं, बीच में रो रहे हैं, तो मैया पीछे भाग रही है, रुको रुको बेटा रुको रुको, और इस समय भी उनके बालों से सारे फूल जमीन पे गिर रहे हैं। तो जी गोस्वामी बताते हैं उस समय भी देखो जिनको पकड़ने के लिए सारे योगी तपी ध्यानी तपस्वी सब लोग भागते रहते हैं लेकिन किसी की पकड़ में नहीं आते हैं। ऐसा लिखा हुआ शास्त्र में कि योगी लोग हजारों जन्म तक तप करते हैं और भगवान के शरीर में एक निरंतर आभा निकलती है नीले रंग की, ब्रह्म तेज कहते हैं उसको, ब्रह्म ज्योति। और उनके 20 नाखून है ना, 20 हाथ के 10 उंगलियां हैं, पैर के 10 उंगलियां हैं, उसके हर एक को नाखून है, उस हर एक नाखून में से अनंत कोटि कोटि किरण निकलते हैं तेज के। कहते हैं हजारों जन्म तप करने के पश्चात उन योगियों को इनमें से एक किरण भी दिखाई नहीं पड़ता है, इतने वो दुर्लभ है। वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, केवल आत्मभक्त जो है उनके लिए वो दुर्लभ नहीं है, अदुर्लभ है, लेकिन बाकी सबके लिए दुर्लभ है वो। वेद ऋचाएं ऋषि मुनि तपी ध्यानी ज्ञानी किसी को पकड़ में नहीं आते हैं। और वो परब्रह्म परमात्मा वे बालक बनकर नंद भवन में आया हुआ है और उसको पकड़ने के लिए मैया भाग रही है और वो ऊपर से डर के मारे भाग रहा है। वो अदुर्लभम जो व्यक्ति है वो अभी मैया के भय से उसके आंगन में उसके सामने दिखाई पड़ रहा है, मतलब उसके पकड़ में तो है ना वो, और वो भाग रहा है उसके पीछे मैया भाग रही है। ये दृश्य देखकर देवता भी अचंभित हो रहे हैं। फिर ब्रह्मा जैसे सभी देवताओं ने भगवान को भयभीत होकर भागते हुए देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। वो कहते हैं कि जिनके जिनके रूप से जिनके अस्तित्व से साक्षात भय भी भयभीत है, ऐसे भगवान स्वयं भयभीत होकर मैया के भय से भाग रहे हैं और मैया उसको पकड़ने के लिए भाग रही है। मैया को पकड़ नहीं पा रही है क्योंकि मैया बुजुर्ग है, कहते हैं उनका कमर जो है बहुत विशाल है, उसमें डरने के लिए उनको भागने के लिए बहुत कष्ट हो रहा है और बालक छोटा सा है, बहुत तेजी से भाग रहा है और मैया रुक रुक करके भाग रही है, डंडा दिखा रही है। तो फिर बाद में एक बार जब पहली बार मुड़ के देखता है कृष्ण तो मैया भी थक गई है भाग भाग के, तो मुझे अभी पकड़ा जाना चाहिए। तो आचार्य लिखते हैं कि भगवान को पकड़ना किसी के बस में नहीं है। तो कैसे पकड़े गए वो, उनकी खुद की इच्छा हुई कि मैं पकड़ा जाऊं, तब वो पकड़े गए। अभी मैया ने पकड़ा एक हाथ से डंडा दिखा रही है तो भगवान कांप रहे हैं, बहुत कांप रहे हैं, उनके कुंडल जो है ना वो हिलडुल रहे हैं, उसका प्रकाश उनके गालों पे गिर रहा है, उनकी धड़कन जो है वो दिख रही है, सांसें फूल रही है जोर जोर से। तो मैया को ध्यान में आया, बालक को ध्यान में आया कि मैया बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है, बहुत थक चुकी है, और मैया को ध्यान में आया कि मेरी डंडी देखकर वो कांप रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि इतना डर जाए कि रात को सोए नहीं उसके बाद में। तो तुरंत डंडा फेंक देती है कि भाई इतना डराना नहीं है, मुझे संस्कार देना है लेकिन डरा डरा कर देना नहीं है। तो उन्होंने देखा और डंडे को फेंक दिया। कहते हैं कृष्ण उस समय, आचार्य बताते हैं कृष्ण उसमें कांपने का नाटक कर रहे थे मैया के सामने, कितना डरा हूं मैं, आंखों से आंसू आ रहे हैं। टू शो दैट ही वॉज फियरफुल, माता की दया को आकर्षित करने के लिए वो रो रहे थे। फिर कैसा दिख रहा है उनका दर्शन, कैसा दिख रहा है, मुख में सब जगह पर मक्खन लगा हुआ है, गाल पे मक्खन लगा हुआ है, दोनों हाथ मक्खन से भरे हुए हैं, यहाँ तक मक्खन भरा हुआ है, सब जगह मक्खन ही मक्खन है, बदन पर मक्खन के छींटे पड़े हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, बालक ने ब्रज रज को लगा दिया कि भाई व्हाइट व्हाइट दिखाई नहीं पड़े, काला काला दिखाए तो मेरे रंग से मिल जाएगा उसको, तो ब्रज रज को मिला दिया, ऊपर से आंसू और काजल वो मिक्स होकर उसका पानी भी मिक्स कर दिया ताकि उनको लगे नहीं कि मैंने मक्खन खाया। तो फिर अभी उनका संवाद शुरू होता है, उनका संवाद सुनिए। कृष्ण कहते हैं माता तुम मुझे क्यों मारने को आ रही हो, यशोदा कहती है क्योंकि तुम चोर हो। ये मटका किसने तोड़ा, मैया पूछ रही है, बोले परम भगवान के डंडे ने उसको तोड़ा। सत्य है ना, परम भगवान तो खुद ही है लेकिन वो मैया को पता नहीं है, बोले परम भगवान जो है उसके डंडे ने उसको तोड़ा। बंदरों को मक्खन किसने दिया, जिन्होंने बंधन को जिसने बंधन को बंदरों को बनाया उसने बंदर को मक्खन दिया, ये भी सच है लेकिन मैया को पता नहीं है कि वही है ये। मतलब मैया को क्या बता रहा है कि किसी और भगवान ने इनको मक्खन खिलाया। फिर मैया पूछती है कि आप मुझे बताइए और अपना जो अहंकार है वो छोड़ दीजिए। तो कृष्ण कहते हैं कि जब तुम ना जोर से भाग गई ना, तुमको ध्यान में नहीं आया, तुम्हारा मन तो उसी पात्र पे था ना, दूध पे, तुमको ध्यान में नहीं आया। जब तुम भाग के गई ना तो तुम्हारे क्या कहते हैं उसको, घाघरा कहते हैं ना उसको, वो उसमें जो अलंकार लगा हुआ था ना, उसका एक अलंकार इस मटके के अंदर अटक गया और वो मटका खींचा गया और वो उल्टा हो गया और टूट गया और तुम कहते हो कि मैंने तोड़ा। मतलब व्हेन यू रैन क्विकली द पॉट ब्रोक ड्यू टू गेटिंग स्टक इन योर एंकलेट्स, आपके पैरों के पायल और आपके घाघरे के अलंकार से अटक कर वो टूट गया, इसमें मेरा क्या दोष है। उस समय इंस्पायर्ड बाय सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, परम भगवान की प्रेरणा से सब बंदर वहां पर भाग के आए और वो मक्खन चोरी करने लगे जो अभी फैल कर जमीन पर तैर रहा था। तो मैंने उन बंदरों को पकड़ा और मक्खन, इतना मूल्यवान आपका मक्खन खाने से उनको मैंने रोका, और मैंने उनको रोका चोरी करने से, यही मेरी गलती है क्या, उसके लिए तुम मुझे मार रही हो। और जब आपको हमने देखा कि आप डंडा लेकर आ रही है तो आपके डर से मैं भाग गया, मैं आपकी सेवा कर रहा था, आपके कीमती मक्खन को बचाने का प्रयास कर रहा था। और जब मैंने आपको भागते हुए देखा तो मुझे लगा कि आपको लग रहा है मैं अपराधी हूँ, मैं दोषी हूँ, आप मुझे पीटोगी, तो इसलिए मैं और भागने लगा, क्योंकि आपके हाथ में जो डंडा था उससे आप क्रूर तरीके से मुझे मारोगी, मुझ पर अन्याय करोगी, इस भावना से मैं भागा। नहीं तो मेरे मन में कोई ऐसा अपराधी भावना नहीं है, आई एम नॉट गिल्टी ऑफ एनीथिंग। तो यशोदा कहती है तुम मुझे मूर्ख बनाना चाहते हो, अपने अपने चिकने चिकने चुपड़े शब्दों से मुझे मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो, भले तुम नंदनंदन ब्रजनंदन हो हाँ, लेकिन तुम एक बंदर की तरह हो, क्योंकि तुम बंदरों से प्यार भी करते हो और बंदर की तरह बर्ताव भी करते हो और बंदरों की तरह चोरी भी करते हो, सब कुछ बंदर की तरह करते हो। तो कृष्ण कहते ठीक है, अगर मैं बंदर हूँ तो मैं भी आज से जंगल में जाके रहूँगा, घर पे आऊँगा ही नहीं। तो यशोदा को लगा अरे ये बालक का कोई भरोसा नहीं है, मैं कुछ कहूँगी तो उसका उल्टा उत्तर देगा और सच में जंगल में जाके रहेगा, घर पे आएगा नहीं, तो इसको बांधना जरूरी है। हाँ, बांधने का प्लान कहाँ से हुआ? Why she thought of tying him? Because she told him that you are like a monkey. And he said, yes, I am like a monkey. I'll go to forest and stay with monkeys only now. तो उसको लगा कि मैंने इतना डांटा है, सच में निकल जाएगा ये, तो बचाना कैसे उसको, तो मैं बांधूंगी उसको, तो मैं भी काम कर सकती हूँ, ये भी घर पे रहेगा, नहीं तो ये निकल जाएगा, पता नहीं क्या करेगा। तो जोर से चिल्लाई मैया और तय किया उसने कि इसको भी बांधना चाहिए, नहीं तो उसको भय था कि ये जंगल में चला जाएगा। तो मैया चिल्लाती है मैं तुम्हें बांध दूंगी अभी, इस उखड़ ने तुमको चोरी करने के लिए मदद की, मैंने देखा तुम उस पर चढ़ते हुए मटके को निकाला तुमने, तो उखड़ ने तुम्हारी चोरी में सहायता की है, तो उखड़ और तुम्हें दोनों को साथ में बांधूंगी, मुझे बहुत सारा काम करना है, लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, देखती हूँ कैसे मक्खन चोरी करते हो, मैं भी बांधती हूँ उसको। तो ये जो लीला है, आचार्य बताते हैं कि इसमें हास्य, विस्मय, करुणा, क्रोध, भय, हर प्रकार का रस इसमें भरा हुआ है। तो कृष्ण भगवान को झूठ मूठ का क्रोध आया कि मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मैया ने मुझे बांधा। अभी मैया उसको बांधने का प्रयास कर रही है, हाँ, तो वो जोर जोर से झूठ मूठ के ऐसे लंबे लंबे सांस ले रहे हैं, सिसकियाँ ले रहा है, ऐसा ऐसा लगता है कि कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है उसके ऊपर। आपको देखा ना बच्चे को ऐसा करके रोते ना, उसको सिसकियाँ भरना कहते हैं, तो ऐसे जोर जोर से रो रहे हैं। हाँ, उतने में कृष्ण चिल्ला रहे हैं जब मैया बांधने का प्रयास कर रही है, ओ रोहिणी माता कहाँ तुम गई हो आज बलराम के साथ, देखो तुम यहाँ पर नहीं हो इसलिए मुझे बांधा जा रहा है, तुम तुरंत जल्दी लौट के आओ, मुझ पर अन्याय किया जा रहा है, तुम्हारी अनुपस्थिति में मैया मुझ पर बहुत क्रूर कार्य कर रही है। तो ये सब चिल्लम चिल्ली सुन के सब पड़ोस की स्त्रियाँ जो है ना गोपियाँ भाग के आई। तो दो ग्रुप हैं, हाँ, एक ग्रुप ऐसा है कि जिनके घर में जाके चोरी करते हैं मक्खन की और उनको फिर खुद को उल्लू बनाते हैं, जब कंप्लेंट करने आते हैं ना उनका ऐसा, मतलब हमारे मराठी में कैसे उसका पचका कर देते हैं, मतलब क्या वो सोचते हैं कि मैं आज बराबर उनका दंड कंप्लेंट करूंगी। ऐसी कहानी बनाते हैं ना कि वो गोपी मूर्ख दिखती है उसके अंदर, तो वो नाराज है कि हर बार ये बालक है ना अपने चतुराई से हमको मूर्ख बनाता है। आज वो पकड़ा गया है इसलिए वो गुरु बहुत खुश है, सब आते हैं और उनको दुख नहीं, उनको बहुत अच्छा लग रहा है कि ठीक है हमको हर बार हमको एम्बेरस करता है, संकोच में लाता है, अच्छा वो आज पकड़ा गया। अपने घर पे ही पकड़ा गया ना, घर के ग्राउंड ग्राउंड पे पकड़ा गया उसी मैया के द्वारा जो कहती थी हमेशा जाओ कभी रंगे हाथ तो पकड़ के लेके आओ उसको। हर बार कंप्लेन करती हो, हर बार कंप्लेन करती हो, वो कुछ कुछ बताते रहता है। इसका एक ही तरीका है, एक बार माखन खाते हुए रंगे हाथ ले आओ तो मैं विश्वास करूंगी, और हम वो कभी नहीं कर पाए। और आज वही मैया उसी के घर में ये चोरी करते हुए पकड़ा गया, अच्छा हुआ करके वो खुशी से आए वहां पर। और दूसरी गोपियां बिलखती रोती आई वहां पर, क्योंकि उनको रोज इच्छा है कि हमारे घर में आके चोरी करें। उनके घर में कभी कभी जाते, कभी कभी नहीं जाते, वो वेट कर रहे हैं कि हम मंथन आपके लिए कर रहे हैं, हम आते नहीं हो। तो उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि इनको पकड़ा जा रहा है, दंड दिया जा रहा है। लेकिन मैया तो मैया है, यशोदा रानी है, वो उनको कौन रोकेगा, कौन मना करेगा उनको कि मत करो, इसको मत बांधो। तो उन्होंने ऐसे ना उपरोधिक, मतलब क्या कहते हैं उसको, चेस्टाइजिंगली बताया कि क्या किया तुम्हारे घर पे, इतना क्या बड़ा अपराध किया है। तो कुछ गोपियां कह रही है क्या उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया, तुम उसके बांधने जा रही हो। दूसरी गोपियां कह रहे हो अच्छा दंड दो उसको, अच्छा दंड दो, आपने कहा था ना पकड़ के लेके आओ, पकड़ के ले, आज तुम्हारे घर पे रंगे हाथ पकड़े गए, अच्छा हो गया। तो उन्होंने यशोदा को डांटा कि कुछ लोगों ने, कुछ लोगों ने अच्छा ऐसे बताया, ऐसे गर्ग मुनि बता रहे हैं। तो फिर बड़े बहुत सारे लड़के भी आए वहां पर, उसमें से दो टाइप के लड़के हैं, कैसे बताओ। जब मक्खन चोरी सब लोग मिलकर करते हैं तो कृष्ण बलराम तो भाग जाते हैं, और कुछ लड़के पकड़े जाते हैं और उनको गोपियां पीटती हैं, और वो सोचते हैं कि सब लोग चोरी करते हैं, पीट तो हम जाते हैं, अच्छा वो आज इसको भी पकड़ा गया, इसको भी दंड हुआ है, तो वो लोग खुश हैं। और दूसरे सोच रहे हैं हम लोग साथ में मक्खन चोरी करते हैं और हम लोग इसकी सहायता से अच्छी तरह से भाग जाते हैं यशस्वी रीति से, और आज हमारा सरदार को है पकड़ा गया है, बेचारा सरदार हमारा रोज हमको माखन खिलाता है चोरी कर करके, और नुस्खा भी बताता है कैसे भागना है, और आज बेचारा खुद फंस गया है और हम लोग देख रहे हैं, मैया को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, मैया को कौन बोलेगा। दो प्रकार के बालक हैं। तो वात्सल्य करुणा भय हास्म हास्य विस्मय क्रोध, ये सबसे ये लीला भरी हुई है। उसके बाद में क्या हुआ, सब गोपियों को कहा, मैया बहुत गुस्से में है, बोले सब लोग तुरंत गौशाला जाओ और दोरी लेके आओ, बांधना है मुझे इसे। अभी गौशाला में दोरी कितनी बड़ी होती है पता है आपको, जिसने गाय का दूध निकाला उसको पता होगा, जो पीछे के दो पैर बांधने के लिए जितनी लंबी दोरी होती है उतनी दोरी गौशाला में होती है, थोड़ी सी होती है, ताकि क्या है ना गाय को कभी मूड आता है जब आप दूध निकाल रहे हो ना, अगर पैर उसके फ्री है ना वो टोंग करके एक लात दे देती है दूध निकालने वाले को, लात मारने के हिसाब से नहीं, ऐसा ही उसकी लीला है। तो वो अगर लात मारेगी तो जो जिसमें पात्र में दूध निकाला जा रहा है वो भी उल्टा हो जाएगा, सारी मेहनत बेकार जाएगी। तो पहले वो दो पैर बांध देते हैं ताकि अगर लात मारने का दिल भी हुआ तो लात नहीं मार सकते हो, हम इत्मीनान से दूध निकाल सकते हैं। तो वो सारी दोरियाँ छोटी छोटी आकर के ना, वो सारी दोरियाँ गौशाला से लेके आती है, और इसका पेट है उसके पीछे उखल है तो उसको बांधने के लंबी दूरी चाहिए ना, तो सबको जोड़ रहे हैं, और जितना जोड़ के प्रयास कर रहे हैं जब गांठ मारने का समय आता है दो उंगली छोटी पड़ रही है, और दूरी लेके आओ, तो और दूरी लेके आ रहे हैं उसको जोड़ रहे हैं, फिर बाद में एक बार गोल घुमा के गांठ मारने का समय आ रहा है फिर दो उंगली छोटी पड़ रही है। यशोदा के गौशाला की सारी दोरियों का जो ढेर था वो समाप्त हो गया उसके अंदर, और फिर भी ये नहीं बंधे। फिर यशोदा ने कहा जाओ अपने अपने गौशाला से दोरी लेके आओ, तो सारी गोपियां अपनी अपनी गौशाला में गई और जितनी दोरियां थी वो सब लेकर आई, क्योंकि उनको पता था कि यशोदा की गौशाला की सारी दोरियां भी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए हमारी गौशाला की सारी दोरियां लेके आना चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी दोरी लेके आए। तो कहते हैं कि उस दिन पूरा ब्रज के सारी रस्सियों का उत्सव हुआ वहां पर, पूरे ब्रज की रस्सियों का उत्सव, फेस्टिवल ऑफ रोप्स, क्योंकि ब्रज की जितनी भी रस्सियां थी वहां इकट्ठा हो गई और सबको, कुछ गोपियां जोड़ने में लगी हुई है, कुछ गोपियां इनका हाथ में देने में लगी है, कुछ गोपियां बांधने में लगी हुई है, और यशोदा मैया बैठ कर कोशिश कर रही है इसको बांधा जाए, बांधा जाए, बांधा जाए, हर बार दो उंगली छोटी पड़ रही है, उसको लग रहा है कि अरे क्या है रहा? ये चमत्कार क्या है कि बालक इतना छोटा सा है, इतनी छोटी उखल है, इतनी दोरियां भी क्यों नहीं बांध पा रही उसको। तो आचार्य बताते हैं कि भगवान भी देख रहे हैं, हाँ मैया के कपाल पर पसीना आया, इतना परिश्रम किया, आश्चर्य भी हो रहा है परिश्रम भी हो रहा है, फिर भी बालों को बांधने का यश नहीं मिल रहे हैं। तो दो उंगलियां जो हैं वो है परिश्रम और कृपा। जब हम पर्याप्त परिश्रम करते हैं तो कृपा होती है, तब तो कार्य सफल होता है। हमारे परिश्रम से कभी भी कार्य सफल नहीं होता है। जब यश आता है तो हम सोचते हैं कि देखो हमारा परिश्रम कितना बढ़िया है, हमारे परिश्रम को यश प्राप्त हुआ है। लेकिन परिश्रम करना केवल हमारे हाथ में है, लेकिन हमारा 100% परिश्रम जो है वो यश का कारण नहीं है। जब हम 100% परिश्रम करते हैं तो भगवान को विश्वास होता है कि इसने अपना 100% समर्पण किया है, तब मैं इसको मेरी कृपा देता हूँ, और उस कृपा के प्रभाव से फिर कार्य संपन्न हो जाता है। तो कृष्ण भगवान देखते हैं कि मैया तो बहुत परिश्रम कर रही है, अपना पूरा दिलो जान से मेहनत कर रही है, अब मुझे बंध जाना चाहिए। तो आचार्य लिखते हैं कौन उनको बांध सकता है, परमात्मा को। वो सबको गुणों में, कर्मों में, कर्म बंधन में बांध देते हैं, पूरे विश्व उनके बंधन में बैठा हुआ है। वही भगवान सबको बांधने वाले अभी निर्णय लेते कि मैं बंध जाता हूँ। तो भगवान ने जब निर्णय लिया कि बंध जाता हूँ, मतलब कृपा किया माँ के ऊपर, तब वो बंध गए और मेरी माँ को मैं मेहनत नहीं करूँगा, ये सोचकर भगवान बंध गए। तो सभी शी ट्राइड टू बाइंड हिम हु हैड बाउंडलेस ग्लोरीज, ऐसा आचार्य लिखते हैं। द लेडीज एक्सक्लेम्ड, ओ यशोदा यू आर सो ब्लेस्ड, यू टाइड अ गोल्डन वेस्ट बेल्ट अराउंड हिज बेल्ट। हाँ, वो क्या बोल रही हैं, अरे तुम रोज उसके कमर में कमर पट्टा बांधते हो ना, रोज हर सवेरे बांधते हो, एक झटके में उसको जोड़ देती हो, आज कैसे आपको इतना बांधने में कष्ट हो रहा है, वही तो कमर है उसकी सुनहरी सांवले रंग की। तो वो कह रहे कुछ बोलो मत अभी, और दोरी लेके आओ। इस प्रकार से बहुत बार प्रयास करने के बाद में उधर से सुबल आया, सुबल, और कृष्ण रो रो के उसको दिखा रहे हैं, मैं देखो कितना दुखी हूँ आज, देखो मैं अकेला फंसा हूँ, तुम लोग सब लोग फ्री हो, और आंखों को मल मल कर हाँ दर्द हो रहा है, ऐसा दिखा रहा है लाल लाल आंखें करके। तो उसको देखकर सुबल बहुत रोया, सुबल को बहुत बुरा लगा। तो कवि कर्णापुर लिखते हैं हाउ कुड यशोदा टाई कृष्णा हु इज मेड अप ऑफ ब्लिस विजडम पावर एंड कॉन्शियसनेस। कृष्णा हैज नो इनसाइड एंड नो आउटसाइड, ही इज लिमिटलेस विथ नो बिगिनिंग और नो एंड, हैज इनफाइनाइट पावर एंड टोटालिटी ऑफ एवरीथिंग, ही इज विद इन एंड विदाउट ऑफ एवरीथिंग। सो कृष्णा डिसाइडेड टू गेट बाउंड लुकिंग एट द एंडेवर ऑफ मदर यशोदा टू अवॉइड हर फर्दर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। सो कवि कर्णापुर बता रहे हैं कि ऐसे भगवान जो है ना अनंत है, लेकिन फिर भी माता के प्रेम भरे प्रयास को देखकर वो अपना बंधना निर्णय कर लेते हैं। किसी प्रकार का ऐश्वर्य उन्हें बांध नहीं सकता है, किसी प्रकार का ऐश्वर्य उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता है, क्योंकि सारा ऐश्वर्य उनका ही है। तो हम किस कौन से ऐश्वर्य से उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उनको क्या अट्रैक्ट करता है, उनको आकर्षित क्या करता है, प्रेम, और प्रेम उनको आकर्षित करता है, शुद्ध भक्तिपूर्ण सेवा उनको आकर्षित करती है, हृदय की सादगी उनको आकर्षित करती है, एब्सॉर्प्शन लौल्यम उनके लिए जो लौल्य है लालयित भाव वो आकर्षित करता है, और समर्पण भाव वन पॉइंटेड सरेंडर एक बिंदु एक व्यक्ति की ओर पूर्णता समर्पण जो है वो उनको आकर्षित करता है। यशोदा के पास बहुत सारा धन था, यश था, कीर्ति थी, सौंदर्य था, लेकिन उससे वो कृष्ण को आकर्षित नहीं कर पाई। उनका जो कृष्ण के प्रति अनंत प्रेम था उसके वजह से वो कृष्ण को आकर्षित कर पाई, और वो उस प्रेम के लिए कृष्ण ने अपना सारा ऐश्वर्य छोड़ दिया। फॉर हर लव ही गेव अप ऑल हिज ऑपुलेंसेस अप टू गिविंग अप हिज पोजिशन ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। दिस इज कॉल्ड हाइएस्ट रेसिप्रोकेशन ऑफ लव। यशोदा के प्रेम को देखकर भगवान ने अपना भी ऐश्वर्य छोड़ दिया। जो अपने ऐश्वर्य को छोड़कर अपने आप को पूरा कृष्ण के लिए समर्पित कर रही है, उसके लिए भगवान ने भी अपना ऐश्वर्य छोड़ दिया, भगवत्ता छोड़ दी, और उसके प्रेम को प्रतिसाद दिया। उसके बाद में क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। मैया ने बांधा फिर उसको अच्छी तरह से, उखड़ को बांध दिया, अभी सफल हो गई वो, बोले सब बच्चे चले जाओ वहां पर भी, कोई याद नहीं रहेगा, मुझे भी बहुत सारे काम है, चुपचाप यहां खड़े रहो, डांट के चले गए। और तब तक तो वो बालक जो है कृष्णा, वो झूठ मूठ का रो रहा था, हंसने लगा। फिर और बालक आए, फिर वापस रोने लगा। जो सारे बालकों ने मिलकर उसको छोड़ने का प्रयास किया, वो जो गांठ मारी थी ना, वो छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उसको छोड़ नहीं पाए। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वो गांठ जो है वो वात्सल्य भाव में यशोदा मैया ने बांधी थी, और सख्य भाव जो है उसके निचला थोड़ा लोअर लेवल का भाव है। तो सखा लोग उस गांठ को छोड़ नहीं पा रहे जो मैया ने बांधी हुई है, है ना। बहुत रोए वो। उतने में खबर पहुंच गई खदीर वन में, और रोहिणी और बलराम जी आए। रोहिणी ने भी सवाल किए क्यों बांधा, तो मैया बस गुस्से में थी, बताया ऐसे ऐसे हुआ, अभी छोड़ो उसको, आप रहने दो उसको, दंड होने दो उसको। तो बलराम जी अकेले गए, रोहिणी मैया से बात करने गई, बलराम जी कृष्ण के पास गए। तो उसको बहुत बुरा लगा अपने सरदार को देखकर, हाँ छोटे भाई को देखकर। उसने भी प्रयास किया, वो भी छोड़ नहीं पाए। तो कहते हैं दाऊ जी कुछ तो करो छोड़ने के लिए मुझे। तो ठीक है मैं अभी ट्राई करता हूँ। तो गए मैया के पास, बोलते हैं मैया तुम जानते हो तुमने किसको बांध के रखा है। तो वो आश्चर्य से देखा कि किसका वर्णन करने जा रहे हैं मुझे। बोलते ये तुमने जिसको बांध के रखा है ना, इसने हिरण्याक्ष का वध किया था, इसने हिरण्यकश्यप का वध किया था, इसने रावण को मारा था, इसने कुंभकर्ण को मारा था। बोला अच्छा, बहुत बड़ा अवतारी व्यक्ति है क्या ये। हाँ तो वो मैया के पास टिक नहीं रहा है बात ये, यू नो आप तो बड़ा सच्चाई बता रहे हो, लेकिन मैया का जो माधुर्य वात्सल्य है ना, उसके ऊपर ये ऐश्वर्य की बातें टिक नहीं रही है। अभी उसने हिरण्यकश्यप को मारा वगैरह, ये ऐश्वर्य की बातें ना, हमें बल की बातें हैं, ऐश्वर्य की बातें हैं, और ब्रज में कोई ऐश्वर्य टिकता नहीं है। आप बोलने में बताओ या करने में दिखाओ, ऐश्वर्य का कोई पोजीशन नहीं है। तो वो तो ऐश्वर्य के ही बखान करते जा रहा है कि डरो डरो, तुमने जो कुछ किया है उसके लिए डरो आप। तो ये बालक जो कृष्ण भगवान है परम, उसने उसको तुमने बांधा है। तो वो कहते हैं कि वो इग्नोर करते उसको। तो बाद में कहती है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं सहस्त्र फनों का नाग अनंत शेष हूँ, मैं सारे ब्रह्मांड को मेरे शीश पे धारण करता हूँ, सब ब्रह्मांड के नीचे जाके। तो डंडा उठाया, कहते सारे अवतारों को मेरे घर पे होना था क्या। भागी वो, और बलराम जी भाग गए। मतलब खुद के ऐश्वर्य का बखान किया तो डंडा दिखाई पड़ा, उसके ऐश्वर्य का बखान किया तो दुर्लक्ष किया गया। सारे अवतारों को मेरे घर पे होना था, भाग गए वो। मैं वापस कृष्ण के पास गए, भैया मेरा सब कुछ ऐश्वर्य जो भी मैंने बताया सब फेल हो गया। तो बोले अभी कृष्ण को मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो बलराम भी चले गए, अभी अकेला रह गए। कृष्ण यहाँ वहाँ देखा तो वो घुटवर घुटवन पे आ गए, और उखल को खींच कर पूरे 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 महल में घूमे, और महल से नीचे उतरे, सीढ़ी भी उतरे, उखल भी सीढ़ी उतरी। हाँ महल से उतरकर आंगन में गए, आंगन से बाहर गए, आंगन के बाहर के जंगल में गए, और वो चल रहे हैं चल रहे हैं, किसी को पता नहीं, सब बाल बाल चले गए, गोपियाँ चली गई, सब चले गए, बलदेव चले गए, अकेले कृष्ण भी उखल को लेकर जा रहे हैं। कुछ कुछ बालक को उत्सुकतावश उनके पीछे पीछे दूर से जा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहा है ये, और छुप छुप के देख रहे हैं। तो ये आगे गए और दो पेड़ों के बीच में से गुजरे, तो उसमें जाकर वो उखल अटक गई। अभी हमने कभी सोचा नहीं, अभी कल ही मैंने एक प्रवचन में सुना, मैं फर्स्ट टाइम सोचा कि देखो यशोदा माई है शरीर से बड़ी, लेकिन है तो स्त्री ना, मैया है वो, कोमल अंग अंग की स्त्री है ना। उसके पास जो दोरियां हैं वो क्या बुलडोजर की दोरियां हैं क्या, वो तो गाय को दो पैर बांधने की दोरिया को कितनी स्ट्रांग होगी। मराठी में कहते हैं एक दोरी होती है, एक दोर खंड होता है, समटाइम्स यू हैव बिग रोप। आपने रथ यात्रा देखी, इतना बड़ा दोरी होता है, वो दोरी अगर गिर गया ना आपके पैर पर तो आपके पैर के छोटे बोन का फ्रैक्चर हो सकता है, इतना बड़ा दोरी होता है, इतना बड़ा दोरी होता है। और वो ऐसा लंबा रथ को लगाते हैं, 6-7 दोरी लगाते हैं, उससे रथ खींचते हैं। इतना बड़ा रथ को खींचना है तो दोरी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए ना, अगर इतना बड़ा रथ खींचे दोरी टूट जाएगी तो दोरी का उपयोग क्या। तो ऐसी कोमल दोरियों से भगवान को बांधा था, और भगवान भी कोमल मक्खन जैसा उनका शरीर है ना। वो है ना रोहिणी और यशोदा मई ना, जब भगवान को कभी समझो कोई बालक आया, समझो मेरे को प्रेम से उसको उठाना है, तो मैं क्या करूँगा, काख में हाथ डालूंगा ना उसके, ऐसे ऊपर उठाऊंगा उसको और चुम्मा लूंगा, या तो उसको उठाऊंगा उड़ाऊंगा। तो उनको, बालक को, कृष्ण और बलराम जी को उठाने में बड़ा संकोच होता था। उनको लगता था कि इनका शरीर इतना कोमल है, इतना कोमल है, मक्खन जैसा शरीर है उनका, हमारी उंगलियां भी सामने उनके सख्त है, तो हमारी तथाकथित सख्त उंगलियों से जब इनके मक्खन जैसा शरीर मैं उठाऊंगा, तो उनके उंगलियां ऐसे मिलती थी एक दूसरे के लिए। अभी मक्खन को आपने पकड़ा है हाथ में, मक्खन को हाथ ले लो और ऐसा करो तो आपकी उंगलियां मिल जाएगी, क्योंकि मक्खन इतना मुलायम होता है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, समझो उसका शरीर ही मक्खन का बना हुआ है, उसको उठाएंगे तो उंगलियां मिल जाएंगी, तो कितना कष्ट होगा उस बालक को, इतना कोमल शरीर है और पैर इतने कोमल है। तो गोपियां विचार कर करके रोती थी घर पे, कभी ये पैर लेकर वो जंगल में बिना चप्पल के चल रहा है, बीच में कांटे कंकड़ पत्थर आएंगे तो कितना कष्ट होगा इस पैर को, ये विचार करके गोपियां रोती थी, इतना कोमलता का ये मूर्तिमान स्वरूप है। तो उसको बांधने के लिए दोर खंड की जरूरत होती क्या, वो तो छोटी सी दोरी से, मतलब जो कमजोर दोरी से बांधा था। अभी कल के प्रवचन में ये विचार मन में आया कि इतने बड़े पेड़ इतने कोमल दरी से अगर खींचते होंगे तो क्या होगा, दोरी टूटेगी, पहली पेड़ गिरेंगे क्या, आप सोचिए इस बारे में। बालक इतना कोमल, कोमल रस्सी से उसको बांधा है, उसको लेकर वो आंगन में दौड़ रहा है, घुटवन चल रहा है, वो उखल दो पेड़ों के बीच में जाके अटक गई और उससे वो खींच रहा है, तो क्या होना चाहिए, दोरी टूटनी चाहिए, लेकिन दोरी नहीं टूटी, उस कोमल दोरी से भगवान ने पेड़ को गिरा दिया। ये भी भगवान की अद्भुत लीला है। और कुछ कुछ ग्वाल बाल छुप छुप के देख रहे हैं, तो दो जो पेड़ गिरे, यमलार्जुन पेड़ थे वो, अर्जुन के पेड़ थे, तो गिरे तो उसमें दो देवता प्रकट हो गए, उन्होंने बहुत जोरदार स्तुति की भगवान की, और भगवान ने ऐसे एकदम क्या कहते हैं ना, रुबाब से उनकी तारीफ सुनी, स्तुति वचन सुने, गायन सुना, गीत सुना उनका। और कुछ देर बाद वो देवता अपना प्रार्थना स्तुति स्तवन समाप्त करके भगवान को प्रदक्षिणा की, उन्होंने वंदन किया, आशीर्वाद लिया और वो चले गए। और वो दो पेड़ जो गिरे, उसकी बहुत जोरदार आवाज हुई, ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मांड को काप दिया उस आवाज ने। वो सुनकर मैया भाग के आई, पहले अपने कमरे में गए जहां बालक को बांध के रखा था कि मेरा बालक तो सेफ है, बालक तो वहां है ही नहीं, बाकी सब लोग आवाज जहां से आई वहां भागे। नंद बाबा तभी खेत में गए थे, वो खेत में कुछ काम कर रहे थे, वो खेत में आवाज सुनकर वो उधर चले गए जहां से आवाज आ रही है। सारे ग्वाल बाल, गोपी गोपियां, सब लोग जंगल में इकट्ठा हो गए जहां पर वो पेड़ गिरे थे। मैया कमरे में गई, बालक को नहीं पाया, मैया भी वहां पर आ गई, तो तुरंत नंद बाबा ने वो गांठ खोल दी। नंद बाबा वो गांठ क्यों खोल पाए, रघु वात्सल्य भाव है ना, अपने रस में बांधी हुई गांठ वो छोड़ पाए, ग्वाल बाल नहीं छोड़ पाए उसको। तो फिर उसके बाद में गांठ छोड़ते ही, उखल से मुक्त होते ही जाकर पिताजी को गले लगाया उसने, आलिंगन दिया पिताजी को, पिताजी ने अपने आलिंगन में लिया उसको, बोला किसने किया ये, बोलते मैया ने किया सब, तुमने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बेकार का दंड दिया, अब मैं मैया के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो बाबा बोलते फिर अभी तुम्हें क्यों, सुबह उठाएगा कौन, तू बाबा, फिर तुम्हारा दंत मंजन कौन करेगा, तू बाबा, फिर तुम्हें स्तनपान कौन कराएगा, नहीं मैं गैया का दूध पीऊंगा, मैया का दूध नहीं पीऊंगा, फिर मक्खन कौन खिलाएगा, तू बाबा, जो जो स्नान कौन कराएगा, हाँ कपड़े कौन पहनाएगा, श्रृंगार कौन करेगा, सब तू बाबा। और ऐसे पिता पुत्र का संवाद हो रहा है और पीछे मैया सुन रही है सब कुछ, वो इतनी पश्चाताप में है कि मैंने क्यों किया ऐसा, दंड क्यों दिया बालक को मैंने, कितना बड़ा रिस्क लिया मैंने, क्योंकि सबके मन में एक ही विचार था, अगर एक आध इंच यहां होते तो एक पेड़ इसके ऊपर ही गिर जाता, कितना बड़ा रिस्क लिया इसको दोरी बांधकर, ये कितना शरारती है आप जानते हो ना, सब लोग कम से कम किसी को पैरे पर रखा होता इसको बांध के, बांध के जाके छोड़ के चली गई तुम यहां से, ऐसे ही विचार चल रहा है मन का कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, और ये भी उसके बालक भी सहमत है कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अभी माता को कितना पश्चाताप हो रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो सब गोपियां के बीच में बैठकर रो रही है, ऊपर से ये जो संवाद हो रहा है ना, ये वज्राघात के सरा उसके लिए है। यशोदा क्यों जी रही है नंदगांव में, हरे कृष्ण के लिए तो जी रही है, कृष्ण को उठाना, उसको श्रृंगार करना, उसको नहलाना, उसको खिलाना, उसको स्तनपान कराना, गायों को संभालना, दही मंथन करना, मक्खन बनाना, पद्मगंधा, हाँ कमल की तरह सुगंधित मक्खन बनाना, दूध बनाना, संदेश बनाना, पूरा 24/7 उसका जीवन जो है कृष्ण के इर्द गिर्द मग्न है। अभी हर एक सेवा को कृष्ण नहीं 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 बोल रहे हैं, इसका मतलब मेरा जीवन अभी अर्थहीन हो गया, सेवाहीन हो गया, मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं बचा, केवल आत्महत्या का एक ही मार्ग बचा अभी, ऐसा मैया मन में विचार कर रही है। और इस विचार से वो फूट फूट कर रो रही है। तो बाबा कहते हैं तुम सब कुछ जो कह रहे हो ना, वो तुम्हारी माँ के हृदय में वज्राघात के समान उसका अनुभव हो रहा है। अभी तुम्हारी माँ अपना शरीर छोड़ने ही वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे। तो तुरंत कृष्ण अपने बाबा की गोद छोड़कर मैया की गोद में भागे, मैया, फिर मैया ने गले में लगाया उसको। तो कृष्ण ने क्या किया इस लीला के माध्यम से, यशोदा के प्रेम को और हजारों गुना बढ़ाया उन्होंने। होता है ना ऐसे, मिलन से एक प्रकार का प्रेम होता है, विरह से या विरह के डर से प्रेम बहुत बढ़ता है। ये क्या किया भगवान ने, अपने आप को मन से ही दूर कर दिया कि मैं ये सब नहीं करूंगा उसके साथ, अब तुम्हारे साथ करूंगा, खाना भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा, तुम्हारे साथ खेलने जाऊंगा, तुम्हारे साथ जंगल जाऊंगा, तुम्हारे साथ करूंगा, मैया का मुंह भी देखूंगा नहीं। इससे क्या किया, मैया को मन से दूर कर दिया। तो मैया एकदम वैफल्यग्रस्त हो गई, सोच रही कि मेरा अस्तित्व ही शून्य हो गया। क्योंकि भक्तों का जीवन क्या होता है, भगवान की सेवा, भगवान को संतुष्ट करने के लिए की हुई सेवा, ये भक्तों के जीवन का सार है। और उनके जीवन में कोई पर्पज नहीं है खुद के आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए जीते नहीं कभी वो, कि मुझे आनंद मिलेगा, मैं जब दूध पिलाऊंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं जब मक्खन खिलाऊंगी तो मुझे खुशी मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं होता उसके अंदर, केवल कृष्ण और कृष्ण की संतुष्टि और उसकी सेवा, इसमें पूरा तन मन धन सांस धड़कन सब उसमें लगी हुई है। और वो जब कोई छीन लेता है तो उनको लगता है जीवन तो बेकार हो गया पूरा। यशोदा मैया दिखा रही है कि उसका जीवन कैसे कृष्ण में सन्निहित है पूरी तरह से। तो संक्षेप में वो दो पेड़ों की कहानी, वो दो दो पेड़ थे, वो नल कुबेर और मणिग्रीव थे, हाँ, और वो कुबेर के पुत्र थे। कुबेर खजांची है भगवान का, देवताओं का। तो कैसा होता है ना कि सब धन जो है उसके पास में है, बड़े तप के साथ में लक्ष्मी जी का तप किया था कुबेर ने, वो रावण का सौतेला भाई है, रावण के पिताजी की और एक पत्नी है, उसका बेटा है वो। तो कुबेर जी ने जब भी लक्ष्मी जी का तप किया था, लक्ष्मी ने बहुत वरदान देकर उसको प्रचंड धनी बना दिया था। उनके बेटे जब धनी बाप के बेटे होते हैं ना, तो उनको भी बेकार का घमंड होता है। तो उस घमंड में नशे में चूर होकर नग्न स्त्रियों के साथ में मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं। तो नारद मुनि वहाँ से आते हैं तो सब लड़कियाँ जो स्नान कर रही है वो तुरंत अपने आप को छुपा लेती हैं, लेकिन ये नशे में चूर नग्न अवस्था में वैसे ही अपना काम करते रहते हैं। तो नारद मुनि को बड़ी दया आती है कि कुबेर जैसे महान व्यक्ति के बेटे हैं वो, और पूरा गलत काम में फंसे हुए हैं, इनको अगर कृपा नहीं करेंगे तो ये और फंसेंगे इसके अंदर। इसलिए उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम इतना नंगा होने का शौक रखते हो और साधुओं का सम्मान भी नहीं करते हो, साधुओं के सामने वो लड़कियां तो भाग गई, वो तो होश में थी, तुम तो बेहोश हो पूरी तरह से, जाओ पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ कभी कपड़ा नहीं पहनता है ना, हमेशा नंगा ही रहता है, गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफान में, बारिश में, बर्फ में, हाँ 50-60 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे ही खड़ा रहता है, जाओ पेड़ बन जाओ। तो तुरंत उनको होश आया, बता ना, दारू एकदम खरकन उतर ली, हाँ एकदम नशा उतर गया उनका। तो बोले महाराज माफ करो, क्षमा करो, तो अभी शाप तो दे दिया आपको, शाप को भोगना ही पड़ेगा। लेकिन वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर में जब परम भगवान कृष्ण आएंगे ब्रज में लीला करने के लिए, तो तुम उसके आंगन में रहोगे, उनकी बाल लीला का दर्शन करोगे पहले बहुत समय तक, और उसके बाद में वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जब भगवान ने उनके बीच में उखल को फंसाया, तो भगवान क्या सोच रहे मन में, तुम ये मत समझ लो कि मैं तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ, मुझे तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है, तुम जो भी हो, हु केयर्स, मैं तुम्हें उखल अटका कर गिरा रहा हूँ, तुम्हारा उद्धार कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उन नारद मुनि पर प्रेम है, जो मेरे भक्त हैं और उन्होंने आपको वचन दिया है, तो मेरा फर्ज है कि उनका वचन को मैं बरकरार रखूं, उनका वचन को सच करने के लिए मैं गिरा रहा हूं। ये मत समझो तुम पर कृपा कर रहा हूं, लेकिन तुम पर कृपा हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मूल कारण जो है वो नारद मुनि का है। आप अगर ब्रज लीला पढ़ेंगे ना, तो उसमें पुतना का वध किया है, शक्टासुर का किया है, तृणावर्त का किया है, बकासुर का किया है, आघासुर का किया है, सब जितने राक्षसों का वध किया है ना, वो सब राक्षसों का वध भगवान ने क्यों किया है, क्योंकि उन सब राक्षसों ने पिछले जन्म में किसी ना किसी ऋषि का अपराध किया है। गर्ग संहिता पूरे कथाओं से भरी हुई है कि सब राक्षस पिछले जन्म में कौन थे। फॉर एग्जाम्पल बकासुर तो एक हयग्रीव नाम के भयंकर राक्षस का पुत्र था, उत्कच राक्षस था वो। 100 साल देवताओं के राज्य पर राज्य किया था अपने तपोबल के आधार पर। वो इतना सुंदर था, राजा था, बलशाली था, सौंदर्य संपन्न था, धनी था, तो गर्भ में चूर होकर एक जाजली मुनि के आश्रम में आया और वहां पर उनके कुंड में जो मछलियां थी वो खाने लगा। जाजली मुनि आके बोले, अरे हमारे आसमान अपने आश्रम में कोई हिंसा नहीं होती है, यहाँ का शेर भी हिरण की हिंसा नहीं करता है, सब लोग बंधु भाव से रहते हैं, और तुम यहाँ पर आकर हमारी मछलियों को क्यों खा रहे हो। इसने जाजली मुनि के प्रभाव को ना समझते हुए मछली खाना जारी रखा, तो मुनि समझ गए कि इसको अकल नहीं आ रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसको वार्निंग दे रहा हूँ लेकिन ये सुधर नहीं रहा है। बोले तो मछली खाने का बड़ा शौक है, जा बगुला बन जा, मछली खाते रहना। तो इतना सुंदर शरीर था उसका, इतना मुकुट पहन के आया था, उधर के उधर ही बगुला बन गया वो। तो जब अपने पूरे जिस पर गर्व है उस अवस्था को बदलते हुए और बगुला बनते हुए देखा, तुरंत सारा गर्व खत्म हो गया उसका, चरणों में गिर गया बगुला के रूप में। महाराज बताओ, बचाओ बचाओ, अरे अभी तो बगुला बन चुके हो, अभी द्वापर में जब कृष्ण आएंगे ना खदीर वन में, तब तुम बगुला बन के आओगे, तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। ऐसे हर राक्षस की कहानी है। कहीं ना कहीं साधु का संपर्क आया उनका, पापी जीवन था साधु के जीवन का, साधु का संपर्क आया, फिर दंड उद्दंड भाव से उधर उनका अपराध किया गया, साधु ने शाप दिया और उसके वजह से कृष्ण का दर्शन हुआ और कृष्ण के हाथ से मौत हो गई। तो लगता तो दंड है लेकिन दंड नहीं है, ये तो बड़ा वरदान है। आप सोचिए अगर ये दोनों नग्न होकर दारू पीकर नशे में चूर होकर नदी में मजा कर रहे हैं, साधु का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं, साधु को बोलते थे मरने दो ना उसको, मुझे क्या करना है, अपने पाप से मरेंगे, आई विल गो ऑन माई ओन वे, ऐसा करते तो वो पाप में ही चूर रहते और आगे भी 50 बार यही करते और आगे 50 साधुओं का अपमान करते, क्योंकि नारद मुनि ने करुणा करके उन पर ये कार्य किया जो हम दंड कहते हैं, लेकिन ये जो कार्य किया ये दंड का कार्य नहीं था, ये उसका उद्धार का कार्य था, उसके पवित्रता करने के लिए कार्य था, पूरा शुद्ध कर दिया पेड़ के रूप में। जितने देखो सत्ययुग की कहानी है ये, जब वो पेड़ बने, और पेड़ तभी भी वहीं बने जब आगे जाकर द्वापर में नंद बाबा का भवन होने वाला है, उसके आंगन में जाकर पेड़ बने और वहीं पर रहे और पेड़ के रूप में इतने लाखों लाखों साल तक सारे पाप की शुद्धि हो गई, हृदय पवित्र हो गया, फिर कृष्ण ने अवतार लिया वैवस्वत मनु के 28वें द्वापर के अंत में, और तब बाल्यकाल से उन्होंने कृष्ण भगवान की लीलाओं का दर्शन किया, हृदय पवित्र हो गया, प्रेम भक्ति का उदय हुआ। कुबेरात्मजौ भद्द मूर्त्यैव यद्वत् तया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च। उसको न केवल पवित्र किया आपने बट भक्ति दिया उसको। अभी वो देवता नहीं रहे, देवता रहे, देवता है, लेकिन भक्ति से भर गए वो, भगवान ने परम कृपा की उनके ऊपर। तो ये नारद मुनि की कृपा है, दंड नहीं है। इसलिए साधु कभी किसी को दंड देते नहीं है, भले वो शाप के रूप में आपके पास आएगा कुछ उनकी घटना, लेकिन वो हमेशा आपके परम कल्याण के लिए ही कारण बनेगा। ये एक बार नहीं, बार बार कृष्ण लीला में हम देखते हैं। अघासुर देखिए आप, अरिष्टासुर देखिए, हर हर की कथा यही है, कहीं ना कहीं परम साधु का संपर्क उनका हुआ, गलत व्यवहार किया, दंड दिया गया, उसके फल स्वरूप उनको प्रेम भक्ति और उद्धार प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से ये कृष्ण का भाव है, कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे लिए मैं नहीं कर रहा हूँ ये, मेरे भक्त ने वचन दिया है ना, इसलिए कर रहा हूँ। नारद मुनि है, जाजली मुनि है, अगस्त्य मुनि है, बहुत सारे मुनियों ने अलग लोगों को कुछ कुछ कहा है, उन्होंने ये कहा था, इसलिए कृष्ण भगवान ने, राम भगवान ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं। तो भगवान किससे बद्ध है? भगवान भक्ति से बद्ध होते हैं, और भक्त जब कुछ कहता है तो उसकी जुबान, उसकी वाणी भगवान झूठी होते हुए दिखाई नहीं कर, देख नहीं सकते भगवान। तो अपने भक्त की दी हुई वाणी अगर लॉजिकल भी हो, हाँ, मतलब क्या कहते हैं उसको, अभी क्या जरूरत है आने की मुझे, ये पेड़ कैसे गिराऊंगा, इतनी कमजोर दूरी बांध के रखी है ना, मतलब लॉजिकली स्पीकिंग, लौकिक दृष्टि से प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है वो सब करना। लेकिन जो इम्प्रैक्टिकल है वो भी मैं प्रैक्टिकल करूंगा मेरे भक्त की वाणी सच करने के लिए। इसका मतलब भगवान अपने भक्त के प्रेम से बंधे हुए हैं। अर्जुन ने वादा किया ना कि कल शाम तक मैं जयद्रथ का वध करूंगा, तो दिन में बीच में सूर्यास्त होना लॉजिकल नहीं था, लेकिन भगवान ने दिन में बीच में सूर्यास्त बनाया अपने भक्त की वाणी को सच करने के लिए, और जयद्रथ का दिन में सूर्यास्त होने के पहले वध हो गया। जो जो कुछ किया है, अभी सवस्त्र खींचते जा रहे हैं दुशासन, 10,000 हाथी का बल जिसके हाथ में है, वो एक कोमल स्त्री का वस्त्र खींच रहा है, तो क्या चांस है उसको बचने का। तो उसमें भगवान वस्त्र बनकर आए, अंबरा अवतार कहते हैं उसको, जो लॉजिकल नहीं है ना, या तो शस्त्र उठाओ और बाण मारो दुशासन को, वध कर डालो, तो हो सकता है, लेकिन वो कोई नहीं कर रहा है वहां पर, सब लोग भ्रमित है, पांडव लोग भी अपने वचन से बद्ध हैं, कुछ नहीं कर सकते, सब लोग ऐसे देख रहे हैं खाली, वो बेचारा वो अकेला अपना खींच रहा है, दुशासन हंस रहा है, कर्ण हंस रहा है, शकुनी हंस रहा है, एकदम असहाय अवस्था थी, तो लॉजिकल नहीं है इसमें, या भगवान खुद आते और उसको बचाते, नहीं, उसने ऐसा अवतार लिया वस्त्रों के रूप में कि लाज भी बच गई और भक्त का गौरव भी हुआ, भगवान नाम का भी गौरव हुआ, सबके सामने अधर्म का उधर पराजय हुआ और धर्म की और भक्ति की विजय हुई, सबके सामने भगवान की कृपा की विजय हुई, हर प्रकार से भगवान ने जो इम्प्रैक्टिकल था वो प्रैक्टिकल करके वहां पर दिखाया। और हर समय भगवान ने ऐसे ही किया अपने भक्तों के लिए, ऐसे ही किया है। वो थे ना वो मांडव्य ऋषि, उनको सूली पे चढ़ा दिया राजा ने, तो सूली पे चढ़ने के बाद भी मरे ही नहीं, सूली पर बैठकर तप किया उन्होंने, सूली पर बैठकर 6 महीने तप किया उन्होंने, बोलो। ऐसे कई चमत्कार भगवान ने भक्तों के लिए किए हैं। भक्तों के लिए क्या नहीं करते हैं, भक्तन के संग तुमने कहा ना कियो, मतलब गाय गजा गजा गाय अजामिल गीत गणिका, चाहे वो भक्त जो है गीत के रूप में हो, वेश्या के रूप में हो, पापी ब्राह्मण के रूप में हो, या वेश्या के रूप में हो, गाय गीत अजामिल गणिका, ऐसे कई लोगों ने अलग अलग रूप में अपना भजन भगवान के सामने प्रकट किया है, और भगवान ने उनके रूप का, बाह्य स्वरूप का ध्यान न रखते हुए उनकी भक्ति को देख पर उन पर परम कृपा किया है। इस तरह से वो जो मणिग्रीव और वो थे नल कुबेर, उनका भगवान ने उद्धार किया। अभी वो जो वापस गए हैं वो गोलोक धाम नहीं गए हैं, वो अपने कुबेर के पास ही गए हैं, लेकिन वो भी शुद्ध भक्त बनकर गए हैं। अभी वो देवता के रूप में गए हैं, लेकिन वो देवता पहले मस्ती में थे, अभी देवता भक्ति में चोर होकर चले गए, उनका जीवन सफल कर दिया। इस प्रकार से फिर जब ही नंद बाबा ने बताया कि मैया अभी जाने ही वाली है, तो मैया के गोद में गए, फिर मैया भी शांत हो गई और सब लोग अपने घर पे लौट गए। लेकिन कुछ गोपियों ने यशोदा को बहुत डांटा कि तुम्हें पता नहीं है, तुम बड़ी देर से माता बनी हो, इस तुमको हैबिट नहीं है, बच्चों को कैसा करना है, दंड कैसे देना है, कैसे नहीं देना है, संस्कार कैसे देने हैं, तुमको कोई अभ्यास नहीं है, इसलिए तुम बार बार गलती करती रहती हो। वो फर्स्ट बर्थडे था तो बच्चे को गोद में से उतार के जमीन पर रख दिया, कैसी मैया हो तुम, बड़ी केयरलेस मैया हो तुम, ऐसे कोई मैया बच्चों को रोड पर छोड़ता है क्या, तुमने गोद में से उसको उतार दिया और तुम चली भी गई उसको अंदर छोड़कर, कम से कम किसी को रखती या किसी को उठाकर अंदर ले जाए बोलती, एक तो गोद में से नीचे रख दिया आपने, अंदर चली गई, तो एक क्षण के अंदर वो आकाश में चला गया, तुमको ट्रेनिंग नहीं है, तुम बड़ी केयरलेस हो। देखो एक तो इतना प्रेम है, ऊपर से उसकी प्रेम की इतनी कठोर शब्दों से परीक्षा की जा रही है, क्या बोलेगी वो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत प्रेम है, क्या बोलेगी, लोग जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं ना उनके सामने, कि तुमने रखा नीचे उसको, इसलिए वो बवंडर उसको आकाश में लेके गया, ऊपर से गिरता नीचे तो क्या होता उसका। ऐसा यशोदा के प्रेम के विषय में बार बार ऐसे प्रसंग आते हैं, यशोदा का प्रेम कितना गहरा है इसके विषय में वो प्रकटीकरण होता है। इट मैनिफेस्ट द डीपर एंड डीपर लव ऑफ यशोदा। तो आइए इस लीला पर हम चिंतन करेंगे। दामोदर महीने का नाम ही इस लीला के आधार पर दिया गया है। इसमें अनंत शिक्षा है हमारे लिए और ये लीला इतनी मधुर है कि कैसे भगवान अपने भक्त के प्रेम में हमेशा बंधे रहते हैं और बंधे रहना पसंद करते हैं, इसका ये श्रेष्ठ प्रमाण है। बोलो दामोदर भगवान की, यशोदा माई की, श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे श्याम।